राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावनवास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सोते रो आधे। जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज।
हारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी।
जय राधा माधव कुंज बिहारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी।
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल
गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल
गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल
गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल
गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल
गोपाल नंदलाल।
Radha Giridhari, Radha Giridhari,
देह होते भजानु लोके
कष्टान कामान हरते वीट भुजम ये
कष्टान कामान हरते वीट भुजम ये
तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वम
तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वम
शुद्धे तस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तं
शुद्धे तस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तं
महत् सेवां वारमाहो विमुक्ते
महत् सेवां वारमाहो विमुक्ते
तमो द्वारं योषिता संगि संगम
तमो द्वारं योषिता संगि संगम
महान्तस्ते समचिता प्रशांता
महान्तस्ते समचिता प्रशांता
विमन्यवः सूरिदसादवो ये
विमन्यवः सूरिदसादवो ये
महत् सेवां वारमाहो विमुक्ते
सेवां वारमाहुर्विमुक्ते
तमो द्वारं योषिता संगि संगम
तमो द्वारं योषिता संगि संगम
महान्तस्ते समचिता प्रशांता
महान्तस्ते समचिता प्रशांता
विमन्यवः सूरिदसाधवो ये
विमन्यवः सूरिदसाधवो ये
नायं देहो देहभाजानु लोके
नायं देहो देहभाजानु लोके
कष्टान कामान हरत विंग भुजम ये
कष्टान कामान गरहते वेट भुजम ये
तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वम्
तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वम्
शुद्धे स्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्
शुद्धे स्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम् महत् सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते
महत् सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते
तमो द्वारं योषितां संगि संगम
तमो द्वारं योषितां संगि संगम
महान्तस्ते समचिता प्रशांता
महान्तस्ते समचिता प्रशांता
विमन्यवः सूयद साधवो ये
विमन्यवः सूयः साधवो ये
कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्ते अध्येव मे विशतु मा नसराजहंस प्राण प्रयाण समये कपवात पीते तस्या कंटावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटास्य पात्र శపుటేశయానం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామే. శ్రీకృష్ణ గోవింద హరే మురారే, హే నాథ నారాయణ వాసుదేవ. జిహవే పిబత్స్వా మృతమేత దేవ, గోవింద దామోదర మాధవేతి. హరే కృష్ణ. తో ఆప్ సబ్ భక్తో కా అంతర్రాష్ట్రీయ కృష్ణ భావనామృత సంఘ్ కి ఓర్ సే ప్రస్థాపిత శ్రీమద్ భాగవత్ కథా కే ఇస్ తృతీయ దివస్ మే హార్దిక్ స్వాగత్ కర్తే హై. పరమ సౌభాగ్య భగవాన్ ఋషభ దేవ్ కే ద్వారా దీ గయీ అద్భుత శిక్షా కా శ్రవణ కర్నే హమ్ సబ్ ఉపస్థిత హువే హై. కభీ కభీ శిక్షా కఠోర భీ లగతీ హై, హో సక్తా హై కభీ శిక్షా అచ్ఛీ లగే బురీ లగే, పరంతు శిక్షా ఆఖిర్ శిక్షా హోతీ హై. దో దిన ఆపనే కథా శ్రవణ కీ, బహుత్ ఆనంద ఆయా, బహుత్ ఉత్సాహ మిలా. हो सकता है आज की शिक्षा शायद हमारे लिए बहुत कठोर हो, परंतु सत्य आखिर सत्य होता है. और यदि हमें जीवन में प्रोग्रेस करना है, प्रगति करनी है, तो सत्य को स्वीकारना होगा, बात को आगे न बढ़ाते हुए कथा को ही आगे बढ़ाना बुद्धिमानी होगी. శ్రీ ఋషభ వాచ. భగవాన్ ఋషభదేవ్ అప్నే 100 పుత్రో ఉపదేశ దేనే కే లియే బైఠే హై. పరాగ్ ప్రభు నే బహుత్ సుందర్ బాత్ కహీ, యే కథా పుత్రో కే లియే అర్థాత్ యూత్ కే లియే భీ హై, ఔర్ యహ కథా మాతా పితాఓ కే లియే భీ హై. माता पिता को इससे यह उपदेश मिलता है कि अपने पुत्रों को किस प्रकार से और कैसी शिक्षा देनी चाहिए, और पुत्र को यह, आज के युवा जवानों को यह उपदेश मिलता है कि किस प्रकार से हमें हमारा जीवन व्यापन करना चाहिए. भगवान ऋषभदेव अपनी शिक्षा में, उपदेश में सर्वप्रथम कहते हैं कि हे मेरे प्रिय पुत्रो, नृलोके, श्लोक में एक शब्द आया है नृलोक. नृ का अर्थ होता है मनुष्य और लोक का अर्थ होता है प्लेनेट. हम सब कहां पर रह रहे हैं, कहते हैं मनुष्य लोक में. सबसे पहले भगवान ऋषभदेव अपने पुत्र को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे मेरे प्रिय पुत्रो, हमारा जन्म पृथ्वी लोक में हुआ है, मनुष्य लोक में हुआ है. मित्रों, इस ब्रह्मांड में 14 लोक है, जैसे मैंने कल वर्णन किया था. भगवान श्री विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल की डंडी में 14 लोक, और जब 14 लोक मिलते हैं तब एक ब्रह्मांड बनता है. इस ब्रह्मांड में 14 लोक है और सबसे बीच वाला लोक है पृथ्वी. क्रम से इसे 7वां लोक कहा जाता है. तो इस पृथ्वी लोक पर हमारा जन्म हुआ है. भगवान ऋषभदेव कहते हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म पृथ्वी पर हुआ है। क्यों? क्योंकि यह पृथ्वी जो है कर्म भूमि है। इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेकर आप जैसे कर्म करते हो आपको वैसा लोक और वैसा स्थान प्राप्त होता है। लाइक अ जंक्शन, जैसे जंक्शन होता है और उस जंक्शन से जो ट्रेन होती है बहुत सारी जगह पर जाती है, तो यह पृथ्वी लोक एक जंक्शन के समान है। और इस संसार में कहीं भी गति इस पृथ्वी लोक से होती है। यदि भगवान के धाम में भी जाना हो या स्वर्ग में जाना हो तो इस पृथ्वी लोक से ही जा सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत के इसी पंचम स्कंद में बड़े बड़े देवता भगवान को प्रार्थना करते हैं, प्रभु प्रभु आप यदि हम पर प्रसन्न हो और आपको यदि हमें कुछ देना है तो हमारा अगला जन्म पृथ्वी के ऊपर दीजिए। नहीं मरने वाले देवता स्वर्ग में बैठे बैठे इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेने की कामना करते हैं। विचार कीजिए, इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेना कितना सौभाग्यशाली है। तो हमारा जन्म इस पृथ्वी लोक पर हुआ है और इस पृथ्वी लोक से ही हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं इस पृथ्वी से श्रेष्ठ है स्वर्ग लोक। क्या स्वर्ग लोक से हम भगवान के धाम में नहीं जा सकते हैं? नहीं। तेतम भूतवा स्वर्ग लोकम विशालम, यद्यपि स्वर्ग लोक बहुत विशाल है, यद्यपि स्वर्ग लोक में बहुत भोग है सुख है, परंतु यदि स्वर्ग में रहने वाले देवता को भी भगवान के धाम में जाना है तो उसे पृथ्वी पर आना होगा। जैसे यदि कोई व्यक्ति मुंबई में, आज सबसे अच्छा एरिया वालकेश्वर को माना जाता है, समझ लो वालकेश्वर में वह समंदर के किनारे बिल्डिंग में करोड़ों के फ्लैट में कोई रहता है, परंतु कुछ भी हो यदि उसे दिल्ली जाना है तो मुंबई सेंट्रल आना ही होगा। वैसे यदि कोई कितना भी अच्छा देवता स्वर्ग में रहता है परंतु भगवान के पास जाना है तो पृथ्वी में आना ही होगा, वाया पृथ्वी होकर ही भगवान के धाम में, क्योंकि पृथ्वी एक कर्म भूमि है और बाकी सब जो लोग हैं वो भोग्य भूमि है। इसलिए ये पृथ्वी लोक पर जन्म लेना बहुत सौभाग्य की बात है। हमारे इतिहास में खटवांग नाम के एक राजा हो गए और इतने पराक्रमी थे, बड़े बड़े देवता भी स्वर्ग में जब युद्ध करना होता था तो पृथ्वी से खटवांग राजा को बुलाते थे। एक बार देवताओं का युद्ध असुरों के साथ हुआ और युद्ध में सहायता लेने के लिए खटवांग राजा को बुलाए। आइए कुंडल कृष्ण प्रभु का स्वागत। हरे कृष्णा खटवांग राजा को बुलाया और राजा खटवांग ने देवताओं के पक्ष से असुरों के साथ युद्ध किया और उस युद्ध करते करते देवता लोग जीत गए। देवताओं के राजा इंद्र प्रसन्न हुए, राजा खटवांग को कहने लगे, प्रभु आपकी सहायता से हम लोग विजय हुए हैं, कहिए आपको क्या चाहिए। तब राजा खटवांग ने, स्वर्ग में खड़े थे और इंद्र उन पर प्रसन्न था, 33 करोड़ देवी देवताओं का राजा इंद्र खटवांग जी के ऊपर प्रसन्न है और कहा, बोलिए तुम्हें क्या चाहिए। राजा खटवांग ने कहा, क्या तुम मुझे भगवान के धाम में पहुंचा सकते हो? इंद्र ने कहा, और कुछ भी मांग लीजिए परंतु भगवान के धाम में यहां से नहीं भेज सकता। तब राजा खटवांग ने कहा, तो इंद्र यह बताओ मेरे जीवन में अब कितना साल जीना बचा है, मेरी मृत्यु कब है। इंद्र ने कहा, यह बता सकता हूं। इंद्र ने देखकर कहा, खटवांग जी बहुत दुख की बात है, आपके जीवन में मात्र 2 घड़ी बची है, बस आपका जीवन 2 घड़ी का बचा है। तब राजा खटवांग ने कहा, इंद्र मुझे 1 घड़ी में पृथ्वी पर भेज सकते हो। बोले हाँ, मुझे तुरंत पृथ्वी पर भेजो। क्या राजा खटवांग वहां स्वर्ग के ऊपर बैठे बैठे प्लान नहीं लगा सकते थे? परंतु उस समय राजा खटवांग ने कहा कि मुझे पृथ्वी पर भेजो। इंद्र की सहायता से राजा खटवांग पृथ्वी पर आए, हरिद्वार में गंगा के तट पर भगवान का स्मरण किए, उनका देह त्याग हुआ और भगवान का स्मरण करते हुए देह को छोड़ा, भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। खटवांग नाम राजर्षि, ये खटवांग नाम के राजा स्वर्ग में थे, परंतु भगवान के धाम में जाने के लिए पृथ्वी पर आए और चले गए। तो ऐसी पृथ्वी के ऊपर नृलोके भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि हे मेरे पुत्रो, यह धन्य भूमि पर हमारा जन्म हुआ है, और उसमें भी इस पृथ्वी में भी जो सबसे पवित्र जगह है, ऐसी भारत भूमि पे हमारा जन्म हुआ है। ऐसे तो इस पृथ्वी में बहुत सारे खंड हैं, बहुत सारे देश हैं, परंतु भारत देश परम पवित्र देश है। साक्षात भगवान कहते हैं, भारत भूमि ते हैले मनुष्य जन्म जाय। हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारा जन्म भारत में हुआ है। विचार कीजिए, भगवान के जितने भी अवतार हुए भारत में, इस संसार में जितनी भी पवित्र नदियां हैं भारत में, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, अलकनंदा, भगवान के सभी अवतार भारत में, सभी पवित्र नदियां भारत में, सभी पवित्र तीर्थ स्थान भारत में, बड़े बड़े ऋषि, महात्मा, साधु, संत भारत में, भागवत का अवतरण भारत में, पुराणों की रचना भारत में, सब कुछ भारत में। और ऐसी भारत भूमि पर जन्म लेना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। इसलिए कहते ना, गर्व से कहो हम भारतीय हैं। इतनी पवित्र भूमि पर हमारा जन्म हुआ है, परंतु भारत वाले क्या करते हैं? पाश्चात्य देश की संस्कृति को अपनाते हैं। मेडिकल में जाएंगे, परफ्यूम खरीदे इंपोर्टेड दीजिए, इंपोर्टेड। शेविंग करने का रेजर इंपोर्टेड, जूता इंपोर्टेड, कपड़ा इंपोर्टेड, सब इस्तेमाल कर रहे हैं पाश्चात्य विदेशों की वस्तु, और कहते हैं गर्व से कहो हम भारतीय हैं। क्या खाक भारतीय है? परंतु भारत भूमि, इस पृथ्वी पर जन्म लेना और पृथ्वी में भी भारत भूमि में जन्म होना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान ऋषभदेव कहते हैं, नृलोके, हे मेरे पुत्रों, मनुष्य लोक में हमारा जन्म हुआ है। इस मनुष्य लोक को, इस पृथ्वी को मृत्यु लोक भी कहा जाता है। इस पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग मरते हैं। यह सुनकर आपके मन में यह प्रश्न होगा, तो क्या अन्य लोकों में रहने वाले लोग नहीं मरते हैं? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, हे अर्जुन, ब्रह्म लोक तक रहने वाले सबको एक ना एक दिन मरना पड़ता है, यहां तक ब्रह्मा को भी एक दिन मरना होता है। वैसे ही संसार में, ब्रह्मांड में 14 भुवन में रहने वाले जीवों को मरना पड़ता है, लेकिन फिर भी पृथ्वी लोक को ही मृत्यु लोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी लोक पर मृत्यु कहीं भी और कभी भी आ सकती है। व्यक्ति कहीं भी और कभी भी मर सकता है, कोई भरोसा नहीं है, इसलिए इस नृलोक को मृत्यु लोक कहते हैं। तो ऐसे मनुष्य लोक में हमारा जन्म हुआ है। देह भाजम, इस लोक में एक शब्द आया है, देह भाजम, भगवान ऋषभदेव कहते हैं, हे मेरे पुत्रो, नृलोके देह भाजम, इस पृथ्वी लोक में देह भाजम, हमको देह प्राप्त हुआ है। इस शब्द को समझने के लिए एक बात हम सबकी बुद्धि में होनी चाहिए कि इस पृथ्वी लोक पर हमको देह मिला है, ये जो शरीर है हमको मिला है। और वास्तविक तत्व की बात यह है कि हम यह शरीर नहीं है, वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर अ सोल। हम यह शरीर नहीं, हम आत्मा है, और हम जीवात्मा को पृथ्वी लोक में देह भाजम यह शरीर प्राप्त हुआ है। भगवान ऋषभदेव और अपने पुत्र को सबसे पहला उपदेश यह दे रहे हैं, वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर अ सोल। हे मेरे पुत्रों, हम लोग यह शरीर नहीं, हम आत्मा है। कई बार लोग ऐसी बात को सुनते हैं परंतु विश्वास नहीं करते, सोचते हैं कि यह सब भावुकता है, आत्मा फात्मा कुछ नहीं है, जो भी है यही है, मरने के बाद किसने देखा है, मरने के बाद क्या होगा हम नहीं जानते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मरने के बाद कुछ नहीं है। वास्तव में गीता में भगवान श्री कृष्ण का सबसे पहला उपदेश यह है कि हम आत्मा है। हमारी पहचान यह है कि हम भगवान के अंश है। ममे वांछे जीवलोके जीव भूत सनातन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में जितने भी लोग हैं, मम एव अंश, मम अंश, इस संसार में सब लोग मेरे अंश है, परमात्मा के अंश। परमात्मा के अंश को आत्मा कहा जाता है। और इस बात को दृढ़ करने के लिए भगवान एक शब्द कहते हैं, एव, मम एव अंश, इस संसार के सभी लोग मेरे ही अंश है, सब हम सब आत्माएं हैं। और भगवान की कृपा से हम सब आत्माओं को मनुष्य का देह प्राप्त हुआ है, देह भाजम। फिर भी कुछ लोग के मन में यह संशय रहता है कि कैसे हम समझे कि हम आत्मा हैं। तो हम यह शरीर नहीं, आत्मा है, इस बात को समझने के बहुत सारे प्रमाण हैं। कुछ प्रमाण का संक्षिप्त में श्रवण कर लीजिए। सबसे पहले हम कॉमन सेंस के द्वारा, साधारण बुद्धि के द्वारा जान सकते हैं कि हम यह शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। मान लो किसी के घर पर कोई मर गया है और मरा हुआ व्यक्ति लेटा है और घर के सब लोग रो रहे हैं और पेपर में बड़ा फोटो आया है, वे चल बसे, या लिखते हैं कि वे स्वर्ग में चले गए, फिर भले नरक में गया हो लेकिन लिखते हैं बहुत बढ़िया है कि हमारे फलाने फलाने स्वर्ग में चले गए, और वो शरीर पड़ा है, लेटा है, सब लोग रोते हैं। मान लो कोई व्यक्ति वहां पर गया और कहा कि आप क्यों रो रहे हो, क्या हो गया यहां पर, तो कहते हैं कि वो चले गए। परंतु यदि कोई प्रश्न करे, कौन चला गया, जिसके साथ आप बोलते थे, बातचीत करते थे, वह तो आपके सामने लेटा हुआ है, बेचारा रोज रात को सोता है, आज दिन को सोया है, रो क्यों रहे हो। बोले नहीं नहीं वो चल बसे। अरे दिख रहा है, वही आंख है, वही हाथ है, आप पकड़ कर देखिए, बड़ी बड़ी आंख है, हाथ है, कान है, नाक है, जीवा, पांव, सब कुछ है। और वजन करके देखिए, आधा किलो भी कम नहीं हुआ होगा, बढ़ गया होगा। वही आंख, हाथ, नाक, शरीर, सब कुछ सामने पड़ा है, फिर भी हम कहते हैं कि वो चले गए और रोते हैं, क्यों? क्योंकि उस शरीर के अंदर जो मुख्य हिस्सा अर्थात जो आत्मा थी वह चली गई। और वास्तव में हम रोते हैं उस शरीर के लिए नहीं, शरीर तो सामने है, रख लो अपने घर पर, सुला दो बेड पर, सो जाओ बाजू में। हम लोग शरीर को नहीं चाहते हैं, उस शरीर के अंदर जो आत्मा है उस आत्मा से प्रेम करते हैं। और वास्तविक बात यह है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। भगवान ऋषभदेव का यह प्रथम उपदेश है। निर्लोके देह भाजम, हम सब आत्मा है और इस पृथ्वी लोक पर हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। तो यह है पहला प्रमाण, और भी बहुत सारे प्रमाण है। नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट बॉडी एक्सपीरियंस, बहुत सारे चेतना के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। चेतना के द्वारा, चेतना अर्थात कॉन्शियसनेस। कभी कभी ऐसा होता है कि हम फुटबॉल को जोर से लात मारते हैं, जोर से बहुत दूर जाकर गिरता है, और वही लात यदि आपने अपने मित्र को मारा तो वो आपको सामने दूसरा लात मारेगा। कभी कभी होता है हम चेयर के ऊपर, कुर्सी के ऊपर 2 घंटा बैठते हैं, परंतु वही 2 घंटा हम हमारे मित्र के गोद में बैठे तो उसे दर्द होने लगता है। आप देखिए, फुटबॉल को आप कितना भी मारो, यहां से वहां, वहां से यहां, फुटबॉल एक बार भी उफ तक नहीं करता है ना? फुटबॉल को दर्द नहीं होता है। चेयर के ऊपर 2 घंटा नहीं, 20 घंटा बैठो, उसे दर्द नहीं होता है। परंतु आप किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी जीव के ऊपर बैठो तो उसे दर्द होता है। क्यों? क्योंकि हम सब में चेतना है, और हमारे शरीर में जहां जहां चेतना है वहां पर दुख और दर्द का अनुभव होता है। और ये चेतना क्या है? ये चेतना जो है आत्मा का प्रकाश है। जैसे बल्ब एक जगह पर होता है लेकिन उसका प्रकाश बहुत जगह पर विस्तार होता है, वैसे आत्मा का स्थान हृदय में है, और वह आत्मा का प्रकाश पूरे शरीर में ब्लड के द्वारा प्रवाहित होता है। इसलिए हमारे शरीर में जहां जहां ब्लड है वहां पर दुख का अनुभव होता है, सुख दुख का। जहां ब्लड नहीं है वहां पर दुख का अनुभव नहीं होता है। बाल को काटो दर्द नहीं होगा, अपने नाखून को काटो दर्द नहीं होगा, क्योंकि बाल और नाखून में ब्लड नहीं होता है, खून नहीं होता है। तो हमारे शरीर में चेतना है, इसका अर्थ है आत्मा है, और आत्मा है ये है ये प्रमाण कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। और भी हमारे साइंटिस्टों ने बहुत सारे केसेस रिसर्च किए, आज भी आप गूगल में जाकर सर्च कीजिए अनेकों केसेस। एक बार एक डॉक्टर एक मरीज को क्लोरोफॉर्म देकर उसको बेहोश कर दिया, क्योंकि बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला था। 10 घंटा तक वह बेहोश रहा, उसका ऑपरेशन शुरू हुआ और पूरा ऑपरेशन काट कूट किया। ऑपरेशन हो जाने के बाद जो मरीज था वह खड़ा होकर डॉक्टर को सारी बात बताया, आप 6 लोग खड़े थे मेरे आजू बाजू में, हाथ में कैंची लेकर मेरे पेट को फाड़ डाला, और उसमें ये कर रहे थे, ये कर रहे थे, और उसी समय नीचे कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे थे। उसी समय डॉक्टर आपको एक फोन आया था किसी का, आपने फोन में बात किया, तो डॉक्टर लोग हैरान हो गए, इसको तो हमने क्लोरोफॉर्म देकर बेहोश कर दिया था, ये तो बिल्कुल कोमा में चला गया था, फिर भी इसे ये सारी बात कैसे पता है। परंतु रिसर्च करने के बाद पता चला कि जब वह व्यक्ति कोमा में चला गया था तब वह व्यक्ति अपने शरीर से बाहर, आत्मा जो थी शरीर से बाहर निकल गई, और आत्मा शरीर से बाहर निकलकर अपना सारा ऑपरेशन देखा अपने शरीर का, साथ ही साथ विंडो के बाहर क्या हो रहा था नीचे ये भी देख लिया, और ऑपरेशन हो जाने के बाद वह आत्मा शरीर में फिट हो गई फिर से, और डॉक्टर को सब कुछ बताया। तो इस प्रकार एक नहीं, ऐसे बहुत सारे केस डॉक्टरों ने रिसर्च किए हैं और ये फाइनल डिसीजन निकाला कि हमारे शरीर में आत्मा है, अर्थात हम आत्मा है और हमको यह शरीर प्राप्त हुआ है। तो भगवान ऋषभदेव का यह सर्वप्रथम उपदेश कि हम आत्मा है, और इस बात को केवल हिंदू धर्म ही नहीं, हिंदू धर्म वाले इसे आत्मा कहते हैं, मुसलमान में, कुरान में इसे रूह कहा गया है, और बाइबल में जीसस क्राइस्ट ने इसे सोल कहा है। सभी धर्म के लोग इस आत्मा को स्वीकार करते हैं। इसलिए सबसे पहला उपदेश, हम यह शरीर नहीं, हम आत्मा है और हम आत्मा को यह मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। इसी के साथ साथ यह भी जान लीजिए, यदि हम शरीर है, यदि हम आत्मा है, तो यह शरीर कैसे बना? तत्व से यदि विश्लेषण किया जाए सांख्य योग के द्वारा, तो हमारा जो यह शरीर है 10 वस्तु से बना है, कंप्लीट शरीर। और जो दिख रहा है यह बॉडी 5 स्थूल तत्व से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हमारे शरीर में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है। इसी के साथ साथ हमारे शरीर में 3 सूक्ष्म वस्तु है, मन, बुद्धि और अहंकार। और उस मन, बुद्धि, अहंकार, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब को चलाने के लिए एक तत्व है, वो है आत्मा अर्थात हम। परंतु हम भी तब तक इस शरीर को नहीं चला सकते हैं जब तक परमात्मा हमको शक्ति न दे। इसलिए हमारे शरीर में परमात्मा का वास है। तो किसी भी व्यक्ति को हम देखते हैं तो उसमें 10 वस्तु होती है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा और परमात्मा। परमात्मा के द्वारा आत्मा को शक्ति मिलती है और आत्मा यह शरीर को चलाती है और यह शरीर काम करता है। जैसे ही आत्मा और परमात्मा इस शरीर से निकल जाते हैं तो यह शरीर लाश हो जाती है, मृत देह बन जाता है। तो अल्टीमेट भगवान ऋषभदेव कहते हैं, नृलोके देह भाजम, हे मेरे पुत्रों, इस मनुष्य लोक में, इस पृथ्वी लोक में हमको मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो जो लोग पहली बार इस बात को सुनते हैं तो उसके मन में एक प्रश्न होगा कि हम सब आत्मा हैं, हम सब परमात्मा के अंश हैं, तो फिर भगवान ने हमको यह शरीर क्यों दिया और शरीर देकर भगवान ने यहां पृथ्वी लोक पर क्यों भेजा? भगवान ने हमको अपने पास क्यों नहीं रखा? कुछ लोग जब दुखी हो जाते हैं ना, तब कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, ये दुनिया क्यों बनाई तूने, हम सबको यहां पर जन्म क्यों दिया? सबका यह प्रश्न होना चाहिए कि हम यहां पर क्यों आए, कैसे आए। शास्त्र के द्वारा इस बात को हम समझ सकते हैं कि वास्तव में भगवान कहते हैं, ममे वांशे जीव लोके जीव भूत सनातन, इस संसार में सब लोग मेरे अंश हैं। भगवान विभू है, उस विभू परमात्मा से अनेकों आत्माओं का जन्म होता है, भगवान से अनेक आत्माएं जन्म लेती हैं। और जैसे ही परमात्मा से आत्मा का जन्म होता है, क्योंकि आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, इसलिए आत्मा का कर्तव्य है परमात्मा की सेवा करना। तो आत्मा परमात्मा से जन्म लेकर तुरंत परमात्मा की सेवा में लग जाती है। 99.99% जो आत्माएं हैं वे भगवान की सेवा में लग गई। 1% में 1 पॉइंट जो है, वे आत्माओं ने सोचा कि हम लोग भगवान की क्यों सेवा करें, हम खुद भगवान बनेंगे। देखिए हमारी कथा बता रहा हूं, काहे को दुनिया बनाई, भगवान ने यहां क्यों भेजा, हम यहां पर क्यों आए, ये हमारी अपनी कथा है। कुछ लोग कहते हैं हम कैसे विश्वास करें, हमको तो कुछ नहीं याद है। मैंने कहा ना, परसों दोपहर को कौन सी सब्जी खाई ये भी हमको याद नहीं है, तो जन्म से पहले क्या हुआ कैसे याद होगा। लेकिन शास्त्र हमें समझाता है इस बात को। तो जब भगवान से आत्माओं का जन्म हुआ, 99.99% आत्माएं भगवान की सेवा में लग गई, परंतु कुछ आत्माएं ऐसी थी कि हम खुद भगवान बनेंगे, हमारी कोई सेवा करना चाहिए। तो भगवान ने समझाया, देखो आप मेरे अंश हो, आप भोग्य हो, मैं भोगता हूं, आप लोग कभी स्वामी मालिक नहीं बन सकते हो। परंतु ये जो कुछ बिगड़ेल आत्मा थी ना, भगवान के बहुत समझाने पर भी नहीं समझे। जैसे एक बालक होता है, पिताजी को कहता है ना, मुझे वो घर घर खेलना है, छोटा सा गैस, छोटा सा कुकर होता है ना, मुझे खिलौना लेकर दो। पिताजी कहते हैं भाई पढ़ने में ध्यान दे, खिलौने से टाइम वेस्ट होगा। वैसे भगवान जो है हम सब आत्माओं के पिता परमात्मा है। उस पिता ने, परम पिता ने बहुत समझाया हमको, परंतु हम भगवान की बात को नहीं माने और अंत में हमारी जीद को देखकर भगवान ने कहा ठीक है, आपकी ही इच्छा है भोक्ता बनने की, भगवान बनने की, तो आपके लिए मैं इस पृथ्वी का निर्माण करता हूं। नहीं तो भगवान को कोई इंटरेस्ट नहीं है पृथ्वी का निर्माण करने में। भगवान तो चाहते हैं कि हम सब भगवान के पास रहे। गीता में गीता का सार कहते हुए भगवान बुलाते हैं सबको, आइए आइए, सर्वधर्मान परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रज, हे संसार में रहने वाले लोगों, आइए मेरे पास, वापस आइए, वापस आइए। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं कि जब तक हम लोग इस संसार में रहेंगे तब तक दुखी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वहां बहुत बड़ा कारखाना चल रहा है और मजदूर कम हो रहे हैं तो भगवान बुला रहे हैं, नहीं, हमारे दुख से भगवान दुखी हैं, इसलिए भगवान बुला रहे हैं आइए आइए। तो पूरा एव प्रारंभ में हमारा जब प्राकट्य हुआ, हम भगवान की सेवा करना नहीं चाहे, तब भगवान ने यह पृथ्वी बनाई और हम सबको भगवान ने यहां भेजा। हमारी इच्छा से, हमारी इच्छा से भगवान ने भेजा। कुछ लोग कह सकते हैं कि ठीक है चलो, हमारी इच्छा हुई भगवान बनने की, हमारे मन में गलत इच्छा उत्पन्न हुई, तो क्या भगवान हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते? देखिए भगवान जो है हम सबको, आत्मा को एक स्वतंत्रता दी है, और स्वतंत्रता इसलिए भगवान ने दिया है क्योंकि हम भगवान से प्रेम कर सके। प्रेम स्वतंत्रता से हो सकता है, जबरदस्ती से नहीं। फिल्मों में होता है ना, फिल्मों में जो विलन होते हैं, जो गुंडे होते हैं, वे हीरोइन को कहते हैं मेरे साथ प्रेम करो, तो क्या हीरोइन प्रेम कर लेगी? जबरदस्ती प्रेम नहीं होता है। प्रेम करने के लिए स्वतंत्रता चाहिए, व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ना होगा। इसलिए भगवान ने हम सबको यह छोटी सी स्वतंत्रता दी है ताकि हम भगवान से प्रेम कर सके। तो उस स्वतंत्रता का हमने गलत फायदा उठाया और हमने इच्छा की प्रभु हमको पृथ्वी पर जाना है। तब भगवान ने माया के द्वारा, भगवान ने बहिरंगा शक्ति महामाया को प्रकट किया। महामाया के तीन गुण सत्व रजत तमस, और ये तीनों गुणों के द्वारा यह भौतिक ब्रह्मांड का, भौतिक संसार का निर्माण हुआ और इस भौतिक संसार में हम सब का जन्म हुआ। और उसमें भी यह जो पृथ्वी है कर्म भूमि, हम सब लोग इस पृथ्वी पर आए और इस पृथ्वी पर आकर हम लोग कर्म करने लगे। तो कुछ लोग कहते हैं ठीक है हम लोग आ गए, चलो हमारी इच्छा से इस पृथ्वी पर, तो मरने के बाद चले जाएंगे ना भगवान के पास? नहीं, हम लोग हमारी इच्छा से पृथ्वी पर आए हैं। अब भगवान के पास हम तब ही जा सकते हैं जब हम भगवान की पूर्ण रूप से शरणागत होकर उनकी भक्ति करेंगे। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद सब लोग भगवान के पास चले जाते, नहीं। गीता में भगवान कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। इस पृथ्वी पर रहकर जो मनुष्य सत्व गुण को स्वीकार करके सत्व गुण में रहकर सत्वगुणी कार्य करता है तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति ऊपर के लोकों में जाता है, रजोगुण में रहकर न पाप करता है न पुण्य करता है तो वह रजोगुणी व्यक्ति यहीं पर रह जाता है 84 के चक्कर में। और तमोगुण में रहकर यदि कोई व्यक्ति पाप करता है जगन्न गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा, वह नरक में जाता है। जाना सबको है, भगवान एक ही श्लोक में तीन बार गच्छन्ति गच्छन्ति गच्छन्ति, और भगवान के द्वारा तीन बार गच्छन्ति अर्थात यह निश्चित है कि हम सबको जाना है। और कहां जाना है ये भी भगवान ने कह दिया। तो हमारे जीवन में यदि अच्छे कार्य भक्ति करेंगे तो भगवान के धाम में जा सकते हैं, परंतु हम लोग भजन न करते हुए सांसारिक कार्य में लिप्त रहते हैं तो कर्म बंधन में फंसते जाते हैं, और वह कर्म का बंधन लगता है बंधन, और एक से एक कर्म का बंधन लगते जाता है। मरने के बाद व्यक्ति नरक में जाता है और नरक के बाद 84 लाख के चक्कर में, कभी गाय कभी बैल कभी गधा कभी कुत्ता, फिर 84 लाख चक्कर के बाद 84 लाख जन्म के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, और फिर मनुष्य जन्म मिला उसको एक चांस मिलता है कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके अब ये भगवान की भक्ति करे, भगवान को याद करे, तो फिर से वो भगवान के पास जा सकता है। और यदि ये मनुष्य जीवन चला गया तो फिर से वो 84 के चक्कर में घूमने लगेगा। तो यहां पर भगवान ऋषभ देव का कहना है कि नृलोके इस पृथ्वी लोक पर देह भाजम हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, इसलिए हम सब लोग हमारी इच्छा से यहां पर आए हैं, और दूसरे शब्दों में क्या कहूं, हम सब लोग यहां आकर फंस गए हैं। भगवान ऋषभदेव कहते हैं हमसे भूल हो गई है, हम लोग फंस गए हैं, और प्रायः सब लोग इसका अनुभव भी कर चुके हैं कि यहां कुछ भी कर लो सुख नहीं मिल रहा है। स्कूल वाले को पूछिए, कहते हैं कॉलेज में जाऊंगा सुखी हो जाऊंगा। कॉलेज वाले को पूछिए तो कहते हैं ऑफिस में पैसे कमाऊंगा सुखी हो जाऊंगा। ऑफिस में पैसे कमाने वाले को कहिए, कहेगा विवाह करूंगा सुखी हो जाऊंगा। जिसका विवाह हो गया है उनको पूछिए आप सुखी हो गए, वो तो सबसे ज्यादा रो रहे हैं। इसका अर्थ है कि सब लोग फंसे हुए हैं, तो हम सब इस पृथ्वी लोक में हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, इसलिए अतः भगवान ऋषभदेव अपने पुत्र को कहते हैं कामान अर्हते न अयम, यह मनुष्य शरीर मनुष्य देह विषय भोगने के लिए नहीं मिला है। ये 84 लाख की योनि है, भगवान से विमुख होकर कृष्णेर बहिर्मुख हम सब लोग यहां पर फंसे हैं, और इस पृथ्वी पर हमको अलग अलग शरीर प्राप्त होता है, गाय बैल गधा कुत्ता, और वह घूमते घूमते मनुष्य का शरीर मिल गया। तो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके हमें भोग नहीं भोगना चाहिए। सीधा कहते हैं कामान अर्हते न अयम, इस शरीर में इस मनुष्य शरीर में विषय भोग नहीं भोगना है, ये मनुष्य शरीर विषय भोगने के लिए नहीं मिला है। देखिए सीधी सीधी बात क्लियर क्लियर बताते जा रहे हैं। सबसे पहले पृथ्वी लोक में हमें जन्म मिला, पृथ्वी लोक में हमें मनुष्य का जन्म मिला। अब मनुष्य जन्म क्यों मिला, तो सबसे पहले नेगेटिव बात कर रहे हैं, मनुष्य जन्म विषय भोगने के लिए नहीं मिला, आगे कहेंगे क्या करने के लिए मिला। कामान अर्हते न अयम, यह मनुष्य शरीर विषय भोग भोगने के लिए नहीं। विषय भोग किसे कहते हैं, विषय भोग हमारे शरीर में जो इंद्रिया है, इस इंद्रिय को तृप्त करने की जो भावना है, इंद्रियों को सुखी करने की जो लालसा है, इंद्रियों के जो विषय है, इस विषयों को ग्रहण करने की जो कामना है, इसे विषय भोग कहते हैं। जैसे भगवान ने हमें बहुत सुंदर आंख दी, क्यों, भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन हमने गलत इस्तेमाल किया। हम इस आंखों के द्वारा फिल्म देखना चाहते हैं, मूवी देखना चाहते हैं, हरे कृष्णा ये आंख जो है अपना विषय देखना चाहती है, और इस आंख के द्वारा हम फिल्म देखना चाहते हैं, गलत गंदे दृश्य देखना चाहते हैं, इसे कहते हैं विषय भोग। आंख के द्वारा भगवान को छोड़कर, भगवान के संबंधित सभी वस्तु को छोड़कर भौतिक वस्तु को देखने की लालसा को काम कहा जाता है। निजेंद्रिय प्रीति वांछा तार नाम काम। भगवान ऋषभदेव कहते हैं काम के लिए यह मनुष्य शरीर नहीं मिला है। काम किसे कहते हैं? निजेंद्रिय प्रीति वांछा, अपनी निज इंद्रियों की प्रीति हेतु, अपने आंख कान नाक त्वचा जिह्वा जनेन्द्रियों को तृप्त करने के लिए जो कार्य है उसे काम कहते हैं। और ऐसे काम भोगने के लिए मनुष्य शरीर नहीं है। कान मिला है, सुनोत तत्पुण्य कथास कर्ण, यह कान मिला है भगवान की कथा सुनने के लिए, परंतु वह छोड़कर फिल्म के गाने सुनना चाहते हैं, इसे कहते हैं विषयी भोग। भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, त्वचा दी है अपने भक्तों को प्रणाम करने के लिए, भक्तों का आलिंगन करने के लिए, परंतु त्वचा के द्वारा हम किसी स्त्री का संग करना चाहते हैं, इसे कहते हैं कामना। भगवान ने जिह्वा दी है, परंतु इस जिह्वा के द्वारा हम अलग अलग भोग खाना चाहते हैं, इसे कहते हैं लालसा, कामना। तो ऐसी कामना तृप्त करने के लिए यह मनुष्य जीवन नहीं मिला है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कामान योषित दर्शन स्पर्श आदिन। वैसे तो काम का अर्थ बहुत होता है। इस भौतिक संसार में जितनी भी भौतिक वस्तु है उसे भोगने की जो इच्छा है उसे काम कहते हैं, परंतु इस संसार में सबसे बड़ी कामना क्या है? कहते हैं योषित दर्शन स्पर्शन आदि। पुरुषों के लिए स्त्रियों का दर्शन करना, स्त्रियों को स्पर्श करना, स्त्रियों का आलिंगन चुंबन, ये स्त्रियों का जो संग है यह है सबसे बड़ी कामना, और स्त्रियों के लिए पुरुष का। इस संसार में, आज की इस दुनिया में पुरुष और स्त्री का संग इसे सबसे बड़ा सुख माना जाता है, और सब लोग इसी के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, परंतु भगवान ऋषभदेव कहते हैं ऐसे काम भोग के लिए न अर्हते अयम, मनुष्य जीवन ऐसे काम भोग के लिए नहीं मिला। तो मन में प्रश्न हो सकता है कि मनुष्य जीवन यह सब काम भोग के लिए नहीं मिला है, और भगवान ऋषभदेव साफ साफ कहते हैं कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। क्यों? मानो वह 100 पुत्र भगवान ऋषभदेव को कहे पिताजी यह काम भोग क्यों नहीं करना चाहिए, तब भगवान ऋषभदेव श्लोक में कहते हैं कष्टान, क्योंकि मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि आप काम भोग में फंसे रहोगे तो कामना से मात्र कष्ट ही उत्पन्न होगा। कष्टान, कामना से कष्ट दुख ही मिलता है। इस संसार का यह स्वरूप है। संसार में हम जिसे सुख समझते हैं, हम सोचते हैं कि इस वस्तु से सुख मिल जाएगा, परंतु भौतिक संसार की किसी भी वस्तु से हमें आत्यंतिक और नित्य सुख नहीं मिल सकता है। कुछ लोग सोचे कि मोबाइल आ गया, मैं जानता हूं तब तक आज से 7-8 साल पहले मोबाइल नहीं था, या 10 साल पहले मोबाइल आया तो हम लोग सुखी हो गए, वाह मोबाइल आ गया, कहीं भी कैसे भी किसी से बात कर सकते हैं। 10-12 साल पहले किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसी वस्तु इतनी छोटी है हमारी जेब में पड़ी रहेगी और दुनिया में कहीं भी बात कर सकते हैं, और सब लोग के पास आज मोबाइल आ गया। विचार करो, एक दिन यदि आप अपना मोबाइल घर पे भूलकर ऑफिस में चले गए या अपना मोबाइल खो गया तो व्यक्ति कितना दुखी होता है। वास्तव में मोबाइल दुख का कारण नहीं है, लेकिन उस मोबाइल में जो आसक्ति हो गई है यह दुख का कारण है, कामना। इसी प्रकार इस संसार में जितनी भी वस्तु है, जितनी भी वस्तुओं को भोगने की लालसा है उससे मात्र कष्ट मिलता है, और कभी कभी हमको लग सकता है कि नहीं नहीं इस भौतिक संसार में भी सुख है, गाड़ी में घूमना, फिल्म देखना, ये वो, मानो किसी को सुख का एहसास हो, परंतु वह सुख कितना है, क्षणिक। शास्त्र तो कहता है भौतिक संसार में सुख है ही नहीं, क्योंकि यह भौतिक जगत जो है दुख देने के लिए बनाया गया है, दुखालयम अशाश्वतम। लेकिन फिर भी संसार की किसी वस्तु को भोगने से हम ऐसा सोच ले कि इसे सुख मिल रहा है, तो वह सुख भी बहुत क्षणिक होता है, बहुत क्षण भंगुर, कम समय के लिए। यही संस्पर्श जाप होगा, दुख यो नहीं अवते आदि अंत वंत कौन्तेय। कृष्ण गीता में कहते हैं इस संसार में जितने भी भौतिक भोग हैं बहुत कम समय के लिए, उस 2 मिनट के सुख के लिए व्यक्ति रात दिन मेहनत करता है। तो भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि इस पृथ्वी लोक पर मनुष्य देह प्राप्त हुआ है कामनाओं को पूर्ण करने के लिए नहीं, विषय भोग भोगने के लिए नहीं, क्योंकि विषय भोग से मात्र कष्ट मिलता है। तो मानो हमारे मन में एक प्रश्न हो, यदि विषय भोग से कष्ट मिलता है फिर भी संसार के लोग विषय भोग में ही क्यों फंसे हैं? यदि विषय भोग से कष्ट मिलता तो सब लोग विषय भोग में क्यों फंसे रहते? ये बात सत्य है, विषय भोगों से मात्र कष्ट ही मिलता है, परंतु इस संसार में ऐसा कलयुग, ऐसा समय आ गया है कि सब जगह पर विषय भोगों को ही एडवर्टाइजमेंट हो रही है। सब जगह पर आंखों से कानों से कूट कूट कर भरा जा रहा है कि आप किसी लड़की के साथ फ्रेंडशिप नहीं करोगे तो दुखी रहोगे। फिल्मों में क्या होता है, वही हीरो दुखी होता है, हीरोइन दुखी होती है, और जब मिलते हैं तो दोनों गाना गाने लगते हैं, सुखी हो जाते हैं। रात दिन फिल्मों में, सीरियल में, टीवी में, पोस्टर में, सब जगह पर यही दिखाया जा रहा है कि पुरुष और स्त्री का संग, इसी में सुख है, इसी में सुख है, इसी में सुख है, इसी में सुख है। और सुनते 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 हमारे मन में यह ढस गया कि वास्तव में इसी में ही सुख है, क्योंकि इतने सालों से आंखों से कान से सबसे यही भरते आए हैं। ये अनुभव किया हुआ, मैं मेरे जीवन का अनुभव बता रहा हूं, और भगवान ऋषभदेव ये बात कर रहे हैं। सब जगह पर यह होने के कारण एक बच्चा बस सोच लेता है कि बस वास्तव में लड़की के साथ घूमने में ही सुख है, विवाह करने में ही सुख है, क्योंकि सब जगह पर यह सिनेमा में ये सुनने का और देखने का बहुत प्रभाव होता है। एक सत्य घटना, एक बार एक ब्राह्मण अपने हाथ में बकरी को लेकर जा रहे थे और 3 ठग थे, लुटेरे, कहीं चोरी करने का अवसर नहीं मिला, सोचा कि आज बकरा खाने का मन हुआ है, क्या करे। तो तीनों ठगों ने, द्रुत ने प्लान बनाया और प्लान के अनुसार तीनों रास्ते में कुछ कुछ अमुक अंतर पर खड़े रह गए। ब्राह्मण बकरी को अपने कंधे में लेकर जा रहे थे, पहला ठग ब्राह्मण को मिला, ब्राह्मण देवता आप ये कुत्ते को लेकर कहां जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा ये कुत्ता नहीं, ये तो बकरी है। बोले नहीं, ये तो कुत्ता है, आप कुत्ते को लेकर कहां जा रहे हो? ब्राह्मण ने उसकी बात पर इतना ध्यान नहीं दिया और आगे चलने लगा। कुछ 5-10 मिनट के बाद दूसरा ठग मिला और दूसरे ठग ने कहा ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण तो बहुत पवित्र होते हैं, ब्राह्मण तो शुद्ध होते हैं, ये कुत्ते को कंधे पे लेकर कहां जा रहे हो? अब ब्राह्मण को थोड़ा थोड़ा विश्वास हुआ कि उसने भी कहा था और ये भी कह रहा है, तो ब्राह्मण ने कंधे से नीचे उतार दिया और आगे चलने लगा। फिर भी साथ में तीसरा ठग मिला, ब्राह्मण जी आप तो चारों वर्णों में श्रेष्ठ हो, ब्राह्मण माने पूजनीय, और कुत्ते को साथ में लेकर चल रहे हो, कुत्ते को पाल रहे हो, कुत्ते के साथ कहां जा रहे हो? अब तो ब्राह्मण को कन्फर्म हो गया कि ये बकरी नहीं, ये कुत्ता है, और ब्राह्मण ने उसको छोड़ दिया और कहा कि कंधे पर लिया था, नदी में स्नान किया और उसे छोड़कर अकेले अपने घर पर चले गए। ये तीनों ठग उस बकरी को लेकर फ्राई करके खा गए। देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तव में ब्राह्मण के पास बकरी थी, लेकिन एक ही बात कि ये बकरी नहीं कुत्ता है, ये बकरी नहीं कुत्ता है, एक ही बकरी नहीं कुत्ता है, एक ही बात बार बार सुनने से ब्राह्मण के दिमाग में यह हो गया कि यह बकरी नहीं वास्तव में कुत्ता है। वैसे ही इस संसार में भौतिक भोगों में दुख है, लेकिन बारंबार सभी लोगों के मुख से, टीवी से, सीरियल से, सब जगह पर यही सुनने मिलता है कि भोगों में सुख है, भोगों में सुख है। आप यदि ये टूथपेस्ट यूज नहीं करोगे तो आप दुखी हो जाओगे। एडवर्टाइजमेंट वाले क्या करते हैं, बस यही दिखाते। आप रेमंड का कपड़ा नहीं पहने तो आप दुखी रहोगे, आपके पास ये कार नहीं आई। तो इस प्रकार से सब लोग सभी ओर से ये बताते हैं, कहते हैं। इसलिए हमारी इस भोगों में बुद्धि हो गई है और हमारी ऐसी बुद्धि हो गई कि बस इसी में सुख है, इसी में सुख है। परंतु वास्तव में भगवान ऋषभदेव सत्य शिक्षा देते हुए कहते हैं कि कामनाओं से, विषय भोग से मात्र कष्ट ही मिल सकता है। और अब भगवान ऋषभदेव ये बताने जा रहे हैं कि ये विषय भोग कितना निंदनीय है। निंदित्वम एव दर्शयति। इस संसार में जो विषय भोग करते हैं वे कैसे हैं, जैसे प्रवचन के प्रारंभ में ही कहा कि शिक्षा कभी कभी कड़वी भी होती है, लेकिन सत्य आखिर सत्य है। भगवान ऋषभदेव कहते हैं इस संसार में, पृथ्वी में, और वो भी मनुष्य जीवन प्राप्त करके, और वो भी भारत में मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि कोई कामनाओं को, विषय भोग को भोगता है तो ते विट भुजाम। वह कौन है भौतिक भोग भोगने वाला, कौन है? विट भुजाम। विट का अर्थ होता है मल। वे मल खाने वाले सुअर, सुकर और कुत्ते जैसे हैं। सुकर क्या करते हैं, ये पशु क्या करते हैं? पशु बस, पशु के चार ही कार्य हैं, भोजन करते हैं, आहार, निद्रा, सोते हैं, भय, किसी ना किसी से डरते हैं, और मैथुन। आहार, निद्रा, भय, मैथुन च सामान्य एतत् पशुभेर नराणाम। भगवान ऋषभदेव कहते हैं ते विट भुजाम। इस संसार में जो लोग मात्र भौतिक भोगों में ही पड़े हैं वे पशु के समान हैं, वे सुअर और कुत्ते हैं। क्योंकि कुत्ते मात्र रात दिन भोग ही भोगते हैं, आहार, खाना खाते हैं, निद्रा, सोते हैं, भय और मैथुन। एक पल के लिए विचार कीजिए कि यदि मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमने भौतिक भोगों को नहीं छोड़ा तो हम में और पशु में क्या अंतर रहा? What is different between animal and human? क्या अंतर है मनुष्य और पशु में? आप देखिए, एक पशु भोजन करता है, मनुष्य भी करता है। हाँ, मनुष्य डाइनिंग टेबल के ऊपर करता है, वो रास्ते में करता है, लेकिन भोजन करने से जो सुख होता है वो दोनों प्राप्त कर रहे हैं। और उल्टा मनुष्य से ज्यादा पशु लोग सुख प्राप्त करते हैं, क्योंकि मनुष्य को भोजन करने के लिए रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, और ये लोग हैं रात दिन बम बम करते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई ऑफिस नहीं है। आज मनुष्य को भोजन करने के लिए, विवाह करने के लिए है ट्रेन का चक्कर, रोज सुबह 9 बजे की ट्रेन, कितनी भीड़ होती है। आप किसी कुत्ते को लेकर जाइए आज रोज सुबह बोरीवली स्टेशन पर, 9:50 की या 9:27 की ट्रेन आए, और कुत्ते को कहे बेटा चढ़ जा, नहीं चढ़ेगा, और हम लोग फर्र करके चढ़ जाएंगे। बताइए, कुत्ता बुद्धिमान है कि हम लोग? तो हमसे ज्यादा सुखी तो कुत्ते हो गए। बताइए क्या अंतर, क्या डिफरेंस? कुत्ते भी भोजन करते हैं, हम भी करते हैं। पशु सोते हैं, हम भी सोते हैं, हम पिलो के ऊपर, बेड के ऊपर सोते हैं, और कुत्ते रास्ते में गाड़ी के नीचे सो जाते हैं। आज तो सोने के लिए हमको नींद की गोली लेनी पड़ती है, और वे लोग बिंदास हाईवे पर सो जाते हैं, हमको स्टेयरिंग ऐसे करना पड़ता है, हैं? बिंदास होते हैं। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं कि हम लोग तो रास्ते पर ध्यान रखते हुए देखकर चलना पड़ता है कि कभी कोई ट्रक वाला न आ जाए, एक्सीडेंट न कर दे, लेकिन चिड़िया कितना भी बड़ा ट्रक वाला है फर्र करके उड़ जाती है, नो टेंशन। तो पशु खाते हैं हम भी खाते हैं, पशु सोते हैं हम भी सोते हैं, पशु डरते हैं। आप कुत्ते के पास पत्थर लेकर जाओ, डर जाएगा। तो क्या हम नहीं डरते? हम भी डरते हैं, हम भी डरते हैं। ऑफिस में अपने बॉस से डरते हैं, कुछ लोग अपने टीचर से डरते हैं, कुछ लोग अपनी पत्नी से डरते हैं। सब अंदर की बातें हैं। और किसी ना किसी से भी न डरे तो मृत्यु से तो सब लोग डर रहे हैं, डरते सब लोग हैं। तो कुत्ते डरते हैं, हम भी डरते हैं। और मैथुनम, कुत्ते विवाह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, और हम भी करते हैं। अब बताइए क्या अंतर रहा हम में और पशु में? तो कुछ लोग कह सकते हैं, नहीं हम तो ऑफिस जाते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, हम स्कूल में जाते हैं। लेकिन स्कूल कॉलेज और ऑफिस में जाकर करते क्या हो? ज्यादा से ज्यादा धन कमाने का प्रयास। और धन कमाकर क्या करोगे? या तो भोजन करोगे, या अच्छा फ्लैट खरीदोगे, सोने की व्यवस्था, और ज्यादा पैसा आ गया तो सिक्योरिटी रखोगे। भाई अल्टीमेट वही चार कार्य में हम लोग लगे हैं, तो बताइए हम में और पशु में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवान ऋषभदेव कहते हैं, ये विट भुजाम, मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो लोग मात्र भौतिक भोग में फंसे हैं, कैसे लोग कहते हैं ना, चार दिन की चांदनी यार किसने देखा है, कल ऐश कर लो, ऐसे लोगों को भगवान ऋषभदेव सीधा कहते हैं कि ये विट भुजाम, ये सुअर और कुत्ते जैसे हैं। तो यदि मनुष्य जीवन भोग भोगने के लिए नहीं, तो फिर क्यों मिला है? मानो भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र कहे कि पिताजी आपने तो बहुत कड़ी शिक्षा दे दी है, आपने तो सीधा कह दिया कि भोग भोगने के लिए यह मनुष्य शरीर नहीं मिला है, तो फिर मनुष्य शरीर क्यों मिला है? अब क्या करना चाहिए हमें? तब भगवान ऋषभदेव इस श्लोक में कहते हैं, दिव्यम सत्वम तपह। हे मेरे पुत्रो, यह मनुष्य जीवन दिव्य सत्वम सतम तपस्या करने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है। देखिए कुछ लोग भगवान ऋषभदेव की इस उपदेश को ठीक से नहीं सुनते हैं और कहते हैं कि भगवान ऋषभदेव ने तपस्या करने के लिए कहा, इसलिए हम लोग रात दिन तपस्या करेंगे। परंतु उपदेश को ध्यान से सुनिए, दिव्यम शब्द लगा है, दिव्यम तप। भगवान ऋषभदेव कहते हैं यह मनुष्य जीवन दिव्य तपस्या करने के लिए मिला है। तपस्या का अर्थ क्या होता है? चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, अन आहार वर्षा तप सहन आदिकम। तपस्या का अर्थ होता है अपने शरीर को कष्ट देना जानबूझकर। क्यों? कहते हैं दिव्यम अप्राकृतम भगवत संबंधी इति अर्थ। भगवान के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर को कष्ट देना, इसे दिव्य तपस्या कहते हैं। एक आचार्य इस बात को बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं, दिव्यम का अर्थ क्या होता है? दिव्यम देवस्य विष्णु आराधनम रूपम तपश्चर्तुम अरहसी। यहां पर दिव्य का अर्थ है भगवान विष्णु। ऋषभदेव अपने 100 पुत्र को उपदेश देते हुए कहते हैं, ये मनुष्य जीवन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने मिला है। विष्णु की तपस्या करने के लिए यह मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, अन्यथा यह मनुष्य जीवन भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। यदि भोग भोगने के लिए ही भगवान ने हमें बनाया होता तो भगवान हमको सुअर बना दे, क्योंकि हम लोग कितना खा सकते हैं? मान लो खाने के लिए बैठे, होटल में गए, अच्छी से अच्छी प्लेट आई, एक रसगुल्ला, दो रसगुल्ला, 10, 25, 50। लेकिन जो सुअर होते हैं वो तो 24 घंटा पड़े ही रहते हैं, मल में खाते रहते हैं। खाने के लिए भगवान ने हमको नहीं बनाया, भगवान ने हमको इस संसार में मनुष्य जीवन दिया है दिव्य तपस्या, भगवान विष्णु की तपस्या करने के लिए। तो सीधा ये जो 100 पुत्र थे ना, बहुत बुद्धिमान थे, इंटेलिजेंट थे, सीधा पूछा, किम तत विष्णुर तप। पिताजी विष्णु की तपस्या क्यों, और किसी की तपस्या क्यों नहीं? यहां भी किसी के मन में होता होगा कि आप विष्णु की तपस्या करने क्यों कह रहे हो, और किसी की तपस्या नहीं? तब भगवान ऋषभदेव इसका उत्तर इसी श्लोक में देते हैं, यस्मात् शुद्धयेत। हे मेरे पुत्रों, यदि भगवान विष्णु के लिए तपस्या करोगे तो तस्मात् यस्मात् शुद्धयेत, आपका अंतकरण हृदय शुद्ध हो जाएगा। देखिए यहां पर बहुत सुंदर सिद्धांत दिया जा रहा है कि यदि अंतकरण को, हृदय को पवित्र बनाना है, शुद्ध बनाना है, तो भगवान विष्णु के लिए तपस्या करनी चाहिए। और भगवान विष्णु को छोड़कर अन्य किसी के भी लिए आप तपस्या करोगे, अंतकरण शुद्ध नहीं होगा। इतिहास खोलकर देख लीजिए, अनेक लोग इस संसार में आए और विष्णु को छोड़कर अन्य देवी देवता और अन्य लोगों के लिए तपस्या की, अपना शरीर जला दिया, अपने शरीर को राख कर दिया तपस्या कर करके, परंतु विष्णु के लिए तपस्या नहीं करने के कारण उनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुदम सर्वभूतानाम ज्ञातवाम शांति मृच्छति। गीता में भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, सभी तपस्याओं का भोक्ता मैं हूं। तपस्या विष्णु के लिए होनी चाहिए, कृष्ण के लिए। और कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी के भी लिए तपस्या करते हो तो हृदय शुद्ध कभी नहीं होगा। हमारे इतिहास में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसका नाम आना चाहिए, आज तक इतिहास में सबसे बड़ी तपस्या किसने की? कहते हैं हिरण्यकश्यपु ने। इतनी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की। भागवत के सप्तम स्कंध के तृतीय अध्याय में वर्णन करते हैं, हिरण्यकश्यपु राजन अजेय जरामरम आत्मानम अप्रतिद्वंदम एक राट व्यधिसत सतेपे मंदर द्रोण्याम तपह परम दारुणम ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादांगुष्टा शितावनी। हिरण्यकश्यपु अजर अमर एक राट अप्रतिद्वंद ये बनने के लिए कठोर तपस्या, कैसी? ऊर्ध्वबाहु अपनी दोनों भुजा ऊपर करके, नभो दृष्टि अपनी आंखें नभ की ओर करके, पादांगुष्टा शितावनी और मात्र अवनि पृथ्वी के ऊपर अपना अंगूठा रखकर खड़ा रह गया। एक दो घंटे के लिए नहीं, या एक दो साल के लिए नहीं, आंखें ऊपर, हाथ ऊपर, अंगूठे के ऊपर खड़ा है। न कुछ खाना है, न पीना है, कुछ नहीं। ऐसे 36,500 वर्ष तक हिरण्यकश्यपु खड़ा रहा। इतनी बड़ी तपस्या, लेकिन यह तपस्या किसके लिए कर रहा था? ब्रह्मा जी के लिए, विष्णु के लिए नहीं। ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए हिरण्यकश्यपु ने 36,500 वर्ष तक तपस्या की। यहां तक हिरण्यकश्यपु को जो इच्छा थी, ऐसा ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद भी दे दिया, तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर लिया, परंतु हिरण्यकश्यपु का हृदय शुद्ध नहीं हुआ, उनका अंतकरण शुद्ध नहीं हुआ। तपस्या करने के बाद भी हृदय शुद्ध नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि विष्णु के लिए तपस्या नहीं हुई। रावण ने कितनी बड़ी तपस्या की, अपने दसों मस्तक काटकर यज्ञ कुंड में डाल दिए। रावण शिव जी का भक्त था, परंतु रावण ने तपस्या करके, यज्ञ करके शिव जी को प्रसन्न कर लिया, परंतु उनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ। भगवान की पत्नी का अपहरण करके लाया, इस जगत जननी माता सीता का क्या काम की है तपस्या? तपस्या मात्र कोरी तपस्या तो वन के पशु पक्षी भी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम बहुत तपस्वी है, बहुत तपस्वी, तो क्या हो गया? क्या ये वृक्ष तपस्या नहीं करते हैं? बिना बिचारे कुछ खाए पिए एक स्थान पर खड़े रहते हैं, न कपड़ा पहनते, न कुछ नहीं, बारिश होती है, ठंडी होती है, धूप होती है, तो क्या वृक्ष को भगवान मिल गए? कभी नहीं। कुछ लोग कहते हैं हम कपड़े नहीं पहनेंगे, हम तपस्वी हैं, तो पशु लोग कपड़े नहीं पहनते तो क्या वह तपस्वी हो गए? वास्तविक तपस्या, भगवान ऋषभदेव कहते हैं, वास्तविक तपस्या विष्णु के लिए। आप कहोगे कि क्योंकि आप विष्णु के भक्त हो इसलिए ये बात कह रहे होंगे, लेकिन आप अपना छठा श्लोक देखिए, मेरे सामने खोलिए, ये बात आगे आएगी। एवं मन कर्म वशम प्रयुक्ते अविद्या आत्मनि उपदीय माने प्रीति न यावन मई वासुदेवे। दूसरी लाइन में भगवान ऋषभदेव क्या कहते हैं, प्रीति न यावत मई, मई माने मुझ, और मई के बाद क्या शब्द लगा है, वासुदेव। बात समझ में आ रही है, आगे ऊपर लिखा है ऋषभुवाच, भगवान ऋषभ बोल रहे हैं और छठे श्लोक में कह रहे हैं मई वासुदेवे यावत न प्रीति, मुझ वासुदेव में जब तक प्रीति नहीं होती है। यहां पर सीधी बात है, भगवान ऋषभदेव साक्षात उस वासुदेव कृष्ण या विष्णु के अवतार है, और भगवान ऋषभदेव क्या कर रहे हैं, तपस्या किसके लिए होनी चाहिए, विष्णु के लिए, अर्थात मई मेरे लिए, वासुदेव के लिए, भगवान के लिए, भगवान को प्रसन्न करने की तपस्या होनी चाहिए। और जब विष्णु के लिए तपस्या करेंगे तब ही हमारा अंतकरण, हमारा हृदय शुद्ध हो सकता है। तो मानो बस सौ पुत्र अपने पिता को पूछे, प्रभु ठीक है पिताजी आपने बहुत सुंदर उपदेश दिया, लाइन से शुरू आप जानते होंगे, नृलोके या पृथ्वी लोक में जन्म हुआ, वह भी मनुष्य का जन्म मिला, तो काम विषय भोग भोगने के लिए नहीं, क्यों, क्योंकि उससे कष्ट मिलता है, तो फिर क्यों मिला, तपस्या करने के लिए, किसके लिए, भगवान विष्णु की तपस्या, और भगवान विष्णु की तपस्या करने से क्या होगा, हृदय शुद्ध होगा। अब ये सौ पुत्र दूसरा प्रश्न और एक प्रश्न पूछ रहे हैं, पिताजी ये हृदय शुद्ध होने से क्या होता है, अंदर कुछ कुछ होता है, क्या होता है, हृदय शुद्ध होने से क्या मिलेगा। तब भगवान ऋषभदेव अंत में कहते हैं ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, जब भगवान विष्णु के लिए तपस्या करते हैं, भगवान विष्णु के लिए हम कर्म कार्य करते हैं, तब हमें ब्रह्म सुख का, ब्रह्मानंद का आनंद मिलता है, पूर्ण नित्य आनंद प्राप्त होता है, जिस आनंद की खोज हम रात दिन कर रहे हैं, और उस आनंद की खोज कर करके करोड़ों लोग मर गए परंतु आनंद को खोज नहीं पाए। हम सब लोग, ये आत्मा जिस आनंद की खोज में है, वह आनंद भगवान विष्णु की तपस्या करने से प्राप्त हो जाएगा, और वह आनंद का स्वरूप कैसा है, उस भगवान विष्णु की तपस्या करके भगवान हमको उनके धाम में वापस बुला लेंगे, और भगवान के धाम में जाकर हम पूर्ण सुखी हो जाएंगे। सुख मात्र भगवान के धाम में है, इस जगत में सुख नहीं है, आप कितना भी ढूंढो सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान ने जब यह जगत बनाया तो इस जगत के ऊपर एक बोर्ड लगाया गीता में, मामु पेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, यह पृथ्वी कैसी, यह भौतिक संसार कैसा है, दुखालय और अशाश्वत। अब जब बनाने वाले ने कह दिया कि जगत दुखालय है, तो हम लोग उसे सुखालय करने वाले कौन हो सकते हैं, कभी सुखी नहीं हो सकते हैं, सुख मात्र भगवान के धाम में। और ये एक घंटा मैंने प्रवचन किया, यदि ये बात आपको समझ में ना आई हो तो मैं आपको एक छोटा सा इतिहास सुनाता हूं, शायद इससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। एक बार आंग्ल देश की महारानी अपने कीमती गहने, मोती से, हीरे से जड़े हुए रत्नों के हार किनारे पर रखकर नदी में स्नान कर रही थी। बहुत बढ़िया नदी में स्नान हो रहा था, वस्त्र और ये जितने भी अपने गहने थे वो बाहर पड़े थे। उसी समय एक पक्षी आया और उस कीमती हार को लेकर उड़कर चला गया। किनारे पर कुछ दासियां बैठी थी, चिल्लाने लगी, अरे बाप रे चला गया चला गया। रानी ने कहा क्या हुआ, कहा रानी जू आपका जो वो कीमती हीरे का हार था वह एक पक्षी लेकर उड़ गया। बांग्लादेश की रानी तुरंत बाहर आई और आकर उस पक्षी को खोजने लगी, परंतु पक्षी मिला नहीं। दुखी होकर अपने राजमहल में वापस आई, बहुत चिंतित थी, दुखी थी। राजा ने कहा प्रिय आप दुखी क्यों हो, रानी ने कहा, प्रभु क्या बताऊं, नदी में स्नान कर रही थी और मेरा फेवरेट कीमती हार एक पक्षी लेकर उड़ गया। राजा ने कहा, इसमें चिंता करने की क्या बात है, एक नहीं 10 हार बनवा दूंगा, आप चिंतित क्यों हो रही हो। दूसरे दिन बड़े बड़े त्रिभुवनदास भीम जी और बड़े बड़े सोनारों को बुलाया और सब लोग अपना अपना कैटलॉग लेकर आए, रानी को बिठाया, आपको जो हार अच्छा लगता है मांग लो। रानी ने सब के कैटलॉग देखे, लेकिन वो जो हार था पुराना, ऐसा कैटलॉग किसी के पास नहीं था। रानी ने राजा को कहा, राजन ये लोग आए तो हैं लेकिन मुझे किसी की डिजाइन अच्छी नहीं लगती, वो जो हार था वही मुझे चाहिए। ये सब लोग चले गए। राजा ने अपने राज्य में जितने भी लोग थे पूरी सभा बुलाई, लाखों लोग आए और राजा ने ऐलान किया कि मेरी रानी के गले का हार एक पक्षी लेकर उड़ गया है, यदि कोई व्यक्ति इस प्रजा में से कोई भी व्यक्ति उस हार को वापस लौटाएगा उसे आधे राज्य का राजा बना दूंगा। सब लोग को उत्साह बढ़ा कि रात दिन ये ट्रेन के चक्कर है, बस केवल हार ढूंढना है, हार मिल गया तो आधे महाराष्ट्र का राजा। तो सब लोग अब अपना काम धंधा छोड़कर हार को ढूंढने लगे, परंतु हार वो मिल नहीं रहा था। सब लोग हार को ढूंढे। कुछ दिन के बाद एक जंगल से लकड़ी काटकर बेचने वाला व्यक्ति जंगल से लकड़ी काटकर आ रहा था, बहुत दूर से आ रहा था, चलते चलते थक गया था। तो चलते चलते एक नदी के किनारे, नदी के बाजू में एक खड्डा था जिसमें पूरे राज्य का मल मूत्र जो गंदगी थी, बांद्रा की खाड़ी तो बहुत अच्छी है लेकिन ये तो बहुत मतलब कीचड़ था, मल मूत्र पूरे राज्य का। तो वे पूरा थक गया, पसीने से लथपथ था और वे वहां बैठ गए और उसे ये बात पता थी, राजा ने कहा था कि हार यदि किसी को मिल जाए तो मैं आधे राज्य का राजा बनूंगा। भाई नदी है, समुंदर नहीं है, आप तो आवाज शुरू कर दी। तो वो वहां पर बैठा और चिंता में थका हुआ था, परंतु उसकी नजर जैसी ऊपर हुई तो राजा ने जैसे हार का वर्णन किया था वह हार उस खाड़ी में देखा और ये तो कपड़ा उपड़ा निकालकर तुरंत खाड़ी में जंप मारा और ढूंढने लगा, हार कहां हार कहां, अब ये लकड़े का चक्कर बंद, अब मैं आधे राज्य का राजा बन जाऊंगा। और वहां पर बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं, और बहुत प्रयास करने के बाद जब नहीं मिला तब वो बाहर आकर उसी स्थान पर बैठ गया, सिर पे हाथ। कुछ देर के बाद वो पानी की जो लहर थी शांत हो गई और फिर आंखें उठाकर देखा तो फिर से हार दिखाई दिया। ये साला हार ही कैसा है, जाता हूं तो कहीं अंदर चला जाता है, आता हूं तो ऊपर आ जाता है। फिर से दौड़ कर गया, उसमें जंप मारा और हार को ढूंढने लगा लेकिन मिल नहीं रहा था। रास्ते में तीन लोग चलते चलते आए, बोले ये खाड़ी में क्या कर रहे हो जिसमें सुअर भी नहीं आते हैं, आप क्या कर रहे हो इसमें। बोले राजा ने जो हार ढूंढने के लिए कहा है ना वो हार इसमें पड़ा है। ये तीनों लोग अपना कपड़ा निकाला नहीं निकाला, तीनों ने जंप मारा, अब चारों मिलकर ढूंढने लगे हार। खाड़ी में आज तक कोई नहीं गिरा था भूल से भी, लेकिन ये चार लोग ढूंढ रहे थे, 15-20 लोग आए, बोले आप लोग क्या करो, बोले हार इसमें है। ये 15-20 लोग आए, अब धीरे धीरे बात फैलने लगी और राज्य के सब लोग अपने अपने घर से, ये जो पत्नी थी पतियों के, भाई जाओ जाओ यदि मिल गया तो ऐश आराम करेंगे, भेज देना घर से ऑफिस में, जाओ जाओ कुछ करके आओ कमा के। सब लोग अपने अपने घर से भेजे और सब लोग वहां पर ढूंढ रहे थे। राजा को ये बात पता चला कि उस खाड़ी में हारे, राजा ने सोचा यदि किसी को मिल गया तो आधा राज्य देना होगा। राजा भी अपना कोट बोट निकाल दिया, बरमुड़ा और गंजी पहनकर, राजा ने सोचा कि यदि मुझे मिल जाएगा तो कम से कम राजा तो रहूंगा। राजा भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर वो भी खाड़ी में गिरा सबके साथ है, और सब लोग ढूंढ रहे हैं हार को, लेकिन हार मिल ही नहीं रहा है। पूरा राज्य उसमें लगा हुआ है, सब लोग उसी में। कुछ देर के बाद वहां पर एक महात्मा आए चलते, महात्मा आए तो अपना सिर खुजाने लगे, अरे शास्त्र में कभी ये जगह का नाम नहीं पड़ा, आज तक कुंभ मेले में भी एक साथ गंगा में इतने लोगों को नहीं देखा, ये कौन सी नदी है, ये कौन सा कुंड है, ये कौन सी पवित्र जगह है, आज तक न सुना न देखा। संत के मन में जिज्ञासा हुई, बोले ये कौन सा तीर्थ है, ये कौन सा तीर्थ है, आप लोग इतनी श्रद्धा से इसमें स्नान कर रहे हो, डुबकी लगाते जा रहे हो। तो राजा ऊपर निकल के कहे, महाराज ये तीर्थ वीर्थ नहीं है, ये हार ढूंढ रहे हैं सब लोग, आप भी आ जाओ। तब संत उस राजा के पास गए और राजा के कान पकड़े, बाहर निकल। राजा को बाहर निकाला और कहा, मूर्ख तुम जहां पर हार ढूंढ रहे हो, हार वहां पर नहीं है, वास्तव में वहां पर उस खाड़ी के बाजू में एक वृक्ष था और वो पक्षी हार लेकर उड़ा था और पक्षी अपने घोंसले में उस हार को रख दिया और हाथ का रिफ्लेक्ट प्रतिबिंब उस खाड़ी में आ रहा था, हार वृक्ष के ऊपर था, उसका प्रकाश खाड़ी में आ रहा था, तो उसको लगा कि खाड़ी में हार है। तो वह संत ने दिखाया, देखो हार नीचे नहीं, हार ऊपर है। तब राजा को ज्ञान हुआ, वास्तव में भक्तों ये खाड़ी में जितने भी गिरे ना, आप लोग बहुत हंसे ना, ये और कोई नहीं, हम लोग ही हैं, और हमको देखकर भगवान के धाम में बैठने वाले हंस रहे होंगे कि देखो सब लोग खाड़ी में हैं। हम सब लोग सोचते कि बस खोज लेंगे, सुख मिल जाएगा, शेयर बाजार से मिल जाएगा, डायमंड मार्केट से मिल जाएगा, कापड़ बाजार से मिल जाएगा, सब खोजते हैं, ये कॉलेज से मिल जाएगा, ये लड़की में मिल जाएगा, ये कार में मिल जाएगा। लेकिन महात्मा आते हैं और दिखाते हैं कि सुख नीचे नहीं, सुख ऊपर है, भगवान के धाम में, भगवान के धाम में सुख है। हमें लगता है कि सुख यहां पर है, वास्तव में वास्तविक सुख भगवान के धाम में है। ये जगत तो भगवान के धाम का प्रतिबिंब है। ऊर्ध्व मूलम अध शाखा, पुरुषोत्तम योग गीता का 15वां अध्याय, भगवान के धाम में जिस वस्तु में सुख है, क्योंकि यह भौतिक जगत भगवान के जगत का विकृत प्रतिबिंब है, इसलिए वही कार्य इस जगत में दुख देगा। तो संसार में हम सब लोग दुखी हैं, और सुखी सुख कहां है, सुख ऊपर भगवान के धाम में है। ये यहां तो कीचड़ है, यहां तो दुख है, दर्द है। तो भगवान ऋषभदेव अपने पुत्र को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे मेरे प्रिय पुत्रों, मनुष्य जीवन मिला है भगवत धाम प्राप्त करने के लिए, और मनुष्य जीवन में ही भगवत धाम प्राप्त करने का उपाय कर सकते हो। कुत्ता कभी भगवान के धाम में नहीं जा सकता, मनुष्य ही, क्योंकि मनुष्य ही भगवान की भक्ति और तपस्या कर सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है दिव्य तपस्या, विष्णु की तपस्या करने के लिए, और वह तपस्या करके अंतकरण शुद्ध होगा और मेरा धाम प्राप्त होगा, भगवान का धाम मिलेगा जहां पर अनंत सुख है, पूर्ण सुख है। तब श्री प्रभुपाद जी भी एक दृष्टांत देते थे, बहुत सुंदर मुझे याद आ रहा है। एक बार एक मेले में एक पिता और पुत्र दोनों गए, पिता करोड़पति थे, अपने पुत्र को साथ में लेकर गए। मेले में तो आप जानते हैं बहुत भीड़ भाड़ होती है। पुत्र ने अपने पिता का हाथ पकड़ के रखा था, दोनों मेले में चल रहे थे, उतने में पुत्र के हाथ से पिता का हाथ छूट गया। पिता ढूंढने लगे, पुत्र भी ढूंढने लगे, एक दूसरे को कोई मिला नहीं। पिता पुलिस में कंप्लेंट लिखाकर अपने घर पर चले गए और यह पुत्र अपने पिता को ढूंढता रहा। जब से पिता अलग हुए हैं तब से यह छोटा सा बालक, 2 साल का बालक रो रहा है। मेला समाप्त हो गया, सब खाली हो गया, मेले से बाहर निकला, बहुत रो रहा था। किसी ने सोचा कि बेचारा बालक रो रहा है, लगता है भूखा है, इसको भूख लगी है। 4-5 वड़ा पाव लाकर दे दिया, बेटा खा लो। लेकिन फिर भी वह बालक रोता रहा। तब किसी ने सोचा कि लगता है इसको पैसा चाहिए, तो किसी ने 2-3 हजार रुपया उस बालक के जेब में रख दिया, फिर भी वह रोता रहा। किसी ने सोचा ठंड बहुत है, इसको कंबल दान में दे दू, किसी ने कंबल दान में दे दिया, लेकिन फिर भी वो बालक रोता रहा। चौथा व्यक्ति उस बालक को मिला। चौथे व्यक्ति ने देखा कि बालक के वर्ण से, उनके कपड़े से लगता है ये कोई साधारण घर का बालक नहीं, कोई बड़े घर का बालक। चौथा व्यक्ति तुरंत उस बालक को लेकर पुलिस स्टेशन में गया कि ये बालक रो रहा है, भटक रहा है, किसका है। पुलिस वाले कहने लगे, हम इसी को ढूंढ रहे थे, इसके पिता करोड़पति हैं। तुरंत फोन किया, मर्सिडीज कार लेकर आए, बालक को कार में बिठाकर चले गए। बालक सुखी हो गया, ये बालक और कोई नहीं, हम लोग हैं, और वो पिता और कोई नहीं, परमात्मा है, भगवान है। हम सब उस परम पिता के अंश हैं, और जब से हम परम पिता से अलग हो गए तब से हमारा दुख शुरू हुआ। अब संसार के लोग कितना भी हमको पैसे का दान करे, भोजन खिलाए, कुछ भी करे, ये दुख बंद नहीं होने वाला है। कब तक? जब तक हम हमारे पिता को वापस नहीं मिलेंगे, हम हमारे पिता के पास वापस नहीं जाएंगे। इसलिए सुखी होना है, नित्य सुख चाहिए तो भगवान का धाम प्राप्त करना है। तुरंत ये 100 पुत्रों ने एक स्वर से कहा, पिताजी तो आप जल्दी ये बताओ कि भगवान के धाम में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना होगा। तब भगवान ऋषभदेव दूसरा श्लोक कहते हैं, महत् सेवा द्वार माहू विमुक्ते तमो द्वारम योषिता संगी संगम महांतस्ते समचिता प्रशांता विमन्य वसुरिद साधवो महत् सेवा द्वार माहू विमुक्ते तमो द्वारम योषिता संगी संग। बहुत सुंदर प्रश्न किया, पिताजी तो हमें भगवान के धाम में जाने के लिए क्या करना होगा। तब भगवान ऋषभदेव एक चरण में कहते हैं, यदि भगवान का धाम चाहिए, विशेष रूपेण मुक्त होना चाहते हो, विमुक्ति चाहिए, तो महत सेवा, महताम सेवा, संसार के बड़े बड़े साधुओं की, संतों की सेवा करो। भक्तों की सेवा करने से, संतों की सेवा करने से आपको भगवान और भगवान का धाम मिल जाएगा। देखिए मुक्ति का द्वार, महत सेवा द्वार माहू में मुक्ते, भगवान का द्वार क्या है, भगवान के धाम का द्वार। कहते हैं भगवान के धाम का द्वार है संतों की सेवा। आप इतिहास खोलकर देख लीजिए, जिन जिन लोगों ने संतों की सेवा की है उनको भगवान प्राप्त हुए हैं। और इनका ज्वलंत प्रमाण, हमारे भारत में रहने वाली एक महिला जिसका नाम शबरी था, पूर्व जन्म में तो महारानी थी, परंतु राजकन्या होने के कारण साधु संतों का संग नहीं कर सकती थी। और उस जन्म में उन्होंने भगवान से यही मांगा, प्रभु यदि दूसरा मनुष्य का जन्म देना हो तो किसी निम्न कुल में जन्म देना ताकि भक्तों का संग कर सकूं। दूसरा जन्म शबर कुल में हुआ। शबर का अर्थ होता है सुअर खाने वाले, सुअर खाने वाले शबरों के वहां उनका जन्म हुआ। एक दिन की बात, शबरी का विवाह तय हुआ, दूसरे दिन विवाह था, उसके अगले दिन रात को कई सारे बकरे उनके घर पर लाकर बांधे गए। शबरी ने अपनी मां को पूछा, माताजी हमारे घर पर इतने बकरे क्यों हैं? माँ ने कहा, बेटा कल तेरा विवाह होने वाला है और हमारे कुल में यह परंपरा है बारातियों को बकरे का मांस खिलाते। शबरी के हृदय में दया उत्पन्न हुई कि मेरे एक का विवाह करने के पीछे इतने जीवों की हत्या। उसी समय शबरी अपना घर छोड़कर चली गई, जंगल में बहुत दूर निकल गई। एक आश्रम में बहुत सारे संत साधु रहते थे और उनके गुरु थे जिसका नाम था मातंग ऋषि। शबरी रोज उनकी सेवा करती परंतु सेवा करती प्रकट न होती। वहां के लोगों को पता न चलता था, पता नहीं लग पाया कि ये सेवा कौन कर रहा है। अंत में ढूंढा, परीक्षण किया, तब पता चला कि एक स्त्री यहां आकर सेवा करती है। उनका सेवा भाव देखकर मातंग ऋषि ने अपने आश्रम में उन्हें रख लिया। शबरी ने अपने गुरु की बहुत सेवा की, महत सेवा, मैं महत सेवा के ऊपर बोल रहा हूं। शबरी ने अपने गुरु की बहुत सेवा की। एक दिन की बात, शबरी के गुरु मातंग ऋषि अपना आश्रम छोड़कर निकल गए। जब जा रहे थे शबरी बहुत दुखी हुई, गुरुजी आप यहां पर रहे होते मुझे कथा कीर्तन का लाभ मिलता, अब तो आप जा रहे हो मैं कैसे जी पाऊंगी, मर जाऊंगी। तब मातंग ऋषि ने इतना ही कहा कि शबरी मुझे तो भगवान की प्राप्ति करने के लिए यहां से चलकर भगवान के पास जाना पड़ रहा है। मैं जा रहा हूं भगवान के पास, मुझे भगवान के पास जाने की आवश्यकता है, कष्ट करना होगा। परंतु हे शबरी, तुमने महात्माओं की सेवा की है और इस महात्माओं की सेवा से प्रसन्न होकर भगवान चलकर तुम्हारे घर पर आएंगे, तुम्हें वादा करता हूं। महत सेवा द्वार माहू, महात्माओं की सेवा जो है मुक्ति का सीधा द्वार है। मातंग ऋषि चले गए और यहां पर शबरी अब गुरु की आज्ञा का पालन, आप देखिए गुरु ने कहा भगवान आएंगे तो आएंगे। और उस दिन से रोज सुबह शबरी बहुत सुंदर सुंदर फूल को तोड़कर पूरा रास्ता सजा देती, वन में से कुछ फल लाकर भगवान के लिए रख दी, परंतु भगवान नहीं आते। दूसरे दिन उतना ही उत्साह, तीसरे दिन उतना ही उत्साह। कई साल बीत गए, हम तो गुरु जी ने कहा है, मान लो हमको कहा हो कि बेटा भगवान आपको मिलेंगे, एक दिन राह देखेंगे, दो दिन, तीन दिन, दस दिन आएंगे, ये गुरु भी नकली है। शबरी ने ऐसा नहीं सोचा, विश्वास था अपने गुरु पर। अनेक वर्ष बीत गए, शबरी बूढ़ी हो गई, अब न तो चल सकती है न देख सकती है, और भगवान को याद कर रही है।
मन नो मोरलियो रटे तारू ना मारी जो पड़ी ये आवो मारा राम। मन नो मोरलियो रटे तारू ना मारी जो पड़ी ये आवो मारा राम। मन नो तारू ना मारी जो पड़ी ये आवो मारना। मन नो मोरलियो रटे तारू ना मारी जो पड़ी ये आवो मारना। एक बार आवी पूरो हैया केरी आशा। बनु रे निराशा
संध्या ढळे ने हूं तो बनु रे निराशा
रात दिवस हूं तो जो तारी मारी जू पड़ी रे आवो मारा
रात दिवस हूं तो जो
तारा चरणों मासा मारी जो पड़ी ये आवो मारा
मागु सदाए तारा चरणों मावा मारी जो पड़ी ये आवो मारा
मन नो मोरलियो रट तारू ना मारी जो पड़ी गे आओ मारा
मन नो मोरलियो रट तारू ना मारी जो पड़ी गे आओ मारा
आरे या थोड़िए होवे ओछु दे
अरे आखड़िए ओछु देखाय छे
दर्शन बिना मारू मनडू मुजाय छे
दर्शन बिना मारू मनडू मुजाय छे
नहीं रे आवो तो वाला जाशे मारा प्राण मारी जो पड़ी ये आवो मारा
नहीं रे आवो तो वाला जैसे मारा प्राण मारी जो पड़ी ये आवो मारा
मन नो मोरली यो रट तारू ना मारी जो पड़ी ये से मारी ला मारी जो पड़ी ये आवो मारा रा नहीं रे आवो तो वाला जासे मारी ला
मारी जो पड़ी ये आवो मारा रा
मन नो मोरलियो रटे तारू ना लड़िए आवो महारा रलियो
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम
राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे
हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण
सब लोग प्रेम से गाइए
कृष्ण हरे हरे
महत कृपा
हरे राम
महात्माओं की सेवा करने से
राम हरे
आज शबरी के सामने भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान ऋषभदेव कहते हैं महात्माओं की सेवा ही मुक्ति का खुला द्वार है, सार्थक हो गया है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे पुकारा तो आंखों से मुख रोता रहा रज रानी तुम्हारे दिन रात यूं नहीं रोता हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
ऋषभदेव के 100 पुत्रों ने प्रश्न पूछा, पिताजी हमें मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, महत सेवा द्वारम माहु विमुक्ते। महताम शुद्ध भक्तों की सेवा करने से मुक्ति का द्वार खुल जाता है। धन्यवाद आप सबको।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बड़ी प्रसन्नता होती है आप सबको देख के। जैसे लाल गोविंद प्रभु अभी उन्होंने कहा कि बहुत साल पहले इधर भगवद्गीता का कोर्स आयोजन हो रहा था, उसमें करीबन पहला कोर्स में करीबन 70-80 लोग आए थे। अभी इतने सारे भक्तों को देख के बड़ी प्रसन्नता होती है। तो आइए, ऋषभदेव का प्रसंग चल रहा है। ऋषभदेव का प्रसंग में बड़ा प्रसिद्ध श्लोक के ऊपर चर्चा भी हो रहा है, महत सेवया। तो महत सेवया, महत का अर्थ क्या है? महत का अर्थ है जो महान भक्त है। तो इसकी व्याख्या ने एक आचार्य ने किया है, महत का अर्थ जो महान भक्त है। वो कैसे महान भक्त हैं? महान भक्त इसलिए है क्योंकि श्रीमद् भागवतम कृति उनकी रुचि है। केवल श्रीमद् भागवतम ही नहीं, जो महान भक्तों को आदर देते हैं वो महत हो जाते हैं। तो ये हमारी जो महत्ता है भक्तों को आदर देने में है, महान भक्तों को आदर देने में है, उसी हमारी महत्ता बढ़ती है। तो जिसके द्वारा, उनकी सेवा करने के द्वारा हम भी ये जो महत तत्व है, ये भौतिक जगत है, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। तो महान भक्त हमारे लिए श्रील प्रभुपाद जी हैं, और उनका सेवा करना इसके द्वारा ही हमारी मुक्ति है। इसके द्वारा ही हमारी इस भौतिक बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। वैसे भगवद्गीता में या पुराणों में भगवान स्वयं कहते हैं अर्जुन को आदि पुराण में कि इमे भक्तस् जना पार्ता न मे भक्तस् जना मद भक्तानाम चे भक्तस्तमे भक्तस्तमाम था। हे अर्जुन, जो मेरे भक्त हैं, वास्तविकता मेरे भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों के भक्त होते हैं वास्तविकता में वो मेरे भक्त है। इसलिए शास्त्रों में इस बात को कहा गया है कि हमको भक्तों का सेवा करना चाहिए, महान भक्तों का सेवा करना चाहिए। लेकिन सेवा का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं कि उनको कुछ खिला दिया, उनको कुछ सत्कार कर दिया, नहीं। उन भक्तों का जो हृदय है, महान भक्तों का जो उनकी मिशन है, उनके हृदय है, उसको पहचानना। जैसे मान लीजिए आप किसी की सेवा करते हो, सेवा कैसे करना चाहिए? उनकी इच्छा के अनुसार, उनके उनका जो उनके लिए प्रिय जो है उसके अनुसार करना चाहिए। तो श्री प्रभुपाद जी के लिए अति प्रिय है प्रचार, क्योंकि श्री प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा आंदोलन को क्यों खड़ा किया? इसलिए खड़ा किया ताकि प्रचार हो। तो प्रभुपाद जी के लिए वो भक्त प्रिय हैं जस्तियत में श्रीमद् भागवतम और भगवद्गीता और हरि नाम का प्रचार करते हैं। तो जो भक्त श्रील प्रभुपाद जी के संस्था में जुड़ के प्रचार की केर क्षेत्र में सेवा करते हैं, प्रभुपाद जी के लिए बहुत प्रिय हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि लाल गोविंद प्रभु श्रील प्रभुपाद जी की वाणी को अनेकों अनेकों जगह श्रीमद् भागवतम की कथा के रूप में प्रचार कर रहे हैं। तो भले ही शास्त्रों में कहा गया है हरि नाम लेने से मुक्ति प्राप्त होता है, या श्रीमद् भागवतम के द्वारा, अध्ययन के द्वारा मुक्ति प्राप्त होता है, ये सब चीज़ें हैं शास्त्रों में, लेकिन सार रूप में ये हैं, जब इन सारे कार्यों को मैं अपने गुरु की सेवा के रूप में कर रहा हूँ ऐसी भाव से अगर किया जाए तो ये सारे कार्य जो है उसका वास्तविक फल प्रदान करते हैं। नहीं तो जब ये जो इनका वास्तविक फल है, हरिनाम का जो वास्तविक फल है या श्रीमद् भागवतम का भी वास्तविक फल है, वो तभी प्राप्त होगा जब हम इन कार्यों को मेरी गुरु की सेवा के रूप में करते हैं। गुरु आज्ञा भगवत आज्ञा भगवत कैंकर्य रूपम, तो शास्त्रों में इन बातों को कहा गया है। हमारे ये सारे भक्ति के कार्यों को करना चाहिए भक्तों के या मेरे गुरु की सेवा के रूप में कर रहा हूँ।
तो इसके द्वारा वास्तविकता में हमारी चेतना बहुत शुद्ध रहती है और साथ साथ में ये जो हमारी जीवन के लिए परम सिद्धि है मुक्ति, वो प्राप्त हो सकती है। इसलिए मैं आप सब भक्तों से निवेदन करूंगा कि आप ये जो भक्ति के कार्य भी करते हैं वो करना चाहिए अनुगत में, गुरु के अनुगत में, श्रील प्रभुपाद जी के अनुगत में। तो जब तक हम श्रील प्रभुपाद जी के अनुगत को स्वीकार करते हुए इन भक्ति के कार्यों करते जाएंगे तो क्या होगा, हमारे जीवन की सिद्धि है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इधर श्रीमद् भागवत में की कथा हो रही है, ये जो कथा है आप में से जो नए हैं ये जानना चाहिए, वैसे अन्य कथाओं से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इधर जो हो रहा है ये गुरु की आज्ञा के द्वारा हो रहा है, ये एक परंपरा के अनुसार, शुद्ध परंपरा के अनुसार हो रहा है। परंपरागत आए हुए जो आचार्य है उन आचार्यों के शरण में ये कथा हो रही है, इसलिए इधर शुद्धता रहती है। और जहाँ शुद्धता है वह निश्चित रूप में कृष्ण हैं। भले ही अनेक जगह भागवत भी हो रहा है लेकिन उधर कृष्ण रहना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो कथा के साथ कोई आचार्य का संबंध नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि शास्त्र, हम भारत में अनेकों कृष्ण मंदिर है लेकिन हर जगह कृष्ण मंदिर है, बहुत जगह कृष्ण विग्रह भी होंगे लेकिन हम उन सब मंदिरों में जाते भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जिस मंदिर के साथ कोई आचार्य का संबंध नहीं है वो मंदिर भले ही कृष्ण का मंदिर ही क्यों ना हो उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। जैसे आप हरिद्वार इत्यादि जगह जाएंगे, बहुत सारे व्यापारी अपना कुछ जमीन लेके एक कृष्ण का विग्रह को स्थापना करके दो तीन ब्राह्मणों को रखे कृष्ण का पूजा कराने के लिए, बड़ा अच्छे से पूजा भी करते होंगे लेकिन उस मंदिर का जो संबंध है, विग्रह का जो सेवा का संबंध है, उसका जो स्थापना है, वो सब चीज़ें के पीछे कोई आचार्य का हाथ नहीं है। और जहाँ आचार्य का हाथ नहीं है भले ही कृष्ण का विग्रह है लेकिन कृष्ण नहीं है उधर। उसी प्रकार बहुत जगह भागवत कथाएं भी होती हैं लेकिन अगर उधर एक शुद्ध वैष्णव परंपरा से आए हुए आचार्य का हाथ नहीं है, उसके पीछे उन आचार्य को प्रसन्न करने की विचार नहीं है, तो भले ही वो भागवत प्रसंग है लेकिन कृष्ण उधर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उधर आचार्य नहीं है। इसलिए आप जब इधर आए हो ये जो भागवत कथा है ये क्या है, ये जो गौड़ी वैष्णव परंपरा है, ब्रह्म मद गौड़ी वैष्णव परंपरा है, ये परंपरा से जुड़ा हुआ है। इसकी वजह से इसके अंदर बहुत पावर रहता है। जैसे एक लाइट है, मान लीजिए ये लाइट चल रहा है, ये लाइट तभी जलता है जब उसका कनेक्शन प्लग पॉइंट के साथ में हो, तभी ये जलना शुरू करता है, रोशनी प्रदान करता है। लेकिन वही बल्ब है, वही लाइट है, तो अगर उसका प्लग पॉइंट के साथ संबंध नहीं है तो क्या है, बल्ब वही है लेकिन उसके अंदर से लाइट नहीं आता है। उसी प्रकार भले ही ये भागवत है लेकिन ये जो इसका संबंध जब तक शुद्ध वैष्णव संप्रदाय के साथ जुड़ा नहीं है, भले ही ये भागवत है लेकिन फिर भी वो जो प्रकाश मिलना चाहिए लोगों को वो प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हम देखते हैं कि अनेकों लोग अनेकों कथाओं में जाते हैं और उनको बहुत मनोरंजन भी प्राप्त होता है। कभी कभी कुछ लोग जो है ऐसी ऐसी भावुकता वाली बातें कहते हैं जिसके द्वारा रोना भी आ जाता है, लेकिन फिर भी वो कथा के बाद उनकी जो गंदी आदतें हैं, जैसे किसी को चाय पीने की आदत है, सिगरेट पीने की आदत है, किसी को मावा खाने की आदत है, ये छूटती नहीं है। लेकिन जैसे वो ये भागवत प्रसंग में आते हैं, श्रील प्रभुपाद जी और वैष्णव आचार्यों के प्रसंग में, उनके अंतर्गत उनके निर्देशन में किया गया जो भागवत प्रसंग में आते हैं, तो पूरा 7 दिन अटेंड करने का उनको ऐसा लगता है कि बस ये सब चीज़ें छोड़ देना चाहिए, उनके अंदर वैराग्य आता है। तो ये जो इफेक्ट है कृष्ण कथा का श्रवण करने के, ये भागवतम के पहला स्कंद के 2 अध्याय में कहा गया है। श्रृण्वताम सकत कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदंतस्तो ये भद्राणी विधुनोति सुहृत सताम। भगवान हमारे मित्र हैं, सुहृत है, वो संतों के मित्र हैं, भक्त के मित्र हैं। इसे क्या करते हैं, हमारे हृदय में निवास करते हुए हमारे हृदय में जितने भी कलमश है, अभद्र हैं, अनर्थ हैं, उसको दूर करते हैं। तो ये अनर्थ निवृत्ति जो है वो कृष्ण कथा का श्रवण करने के द्वारा होता है, कृष्ण का शरण कर लेने के द्वारा होता है। वैसे धीरे धीरे से किस प्रकार अनर्थों की निवृत्ति होने के बाद निष्ठा, वैसे बढ़ते बढ़ते भाव और अंततः कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की विधि जो है, ये शुद्ध वैष्णव परंपरा से जुड़े भक्त हैं उन वही अनुभव कर सकते हैं। तो जितने भी नए आए हैं तो इन भक्तों के लिए एक खास विनती है, आप ये मत सोचिए इधर जो प्रसंग हो रहा है ये भी और एक कथा है, ये और एक कथा नहीं है, इसके अंदर विशेषता है। विशेषता ये है कि ये जो है ये श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इससे जुड़ा हुआ है। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका पहुंच रहे थे उस समय केवल यही बात को स्मरण कर रहे थे कि उन लोगों को देख रहे थे सब लोग नशा कर रहे हैं, अनेकों अनेकों विचार में व्यक्त हैं, व्यस्त है और बहुत सारे पाप कार्य कर रहे हैं, तो सोच रहे थे और प्रार्थना करते हैं कृष्ण मुझे मालूम नहीं है इन लोगों को कैसे उद्धार करना है, लेकिन मुझे ये भरोसा है आपकी जो वाणी है इतनी शक्तिशाली है ताकि वो किसी भी पापी व्यक्ति को का हृदय परिवर्तन कर सकता है। तब ये भागवत के इन श्लोकों को स्मरण कर रहे थे, श्रृण्व काम स्वगत कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदंतस्तो ये भद्राण विधुनोति सुहृत सताम। इसलिए आप सब इधर आए हों, मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबको, क्योंकि आपको ऐसा इधर मौका प्राप्त हो रहा है। क्या मौका प्राप्त हो रहा है? हमारे हृदय की शुद्धिकरण करने की मौका प्राप्त हो रहा है। और साथ साथ में ये ऋषभ देव की शिक्षाओं में से सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यही है, महत् सेवया द्वारम मुक्ते, मुक्ति का द्वार खुल जाता है। कैसे? महत् सेवा के द्वारा। आप जब आए हो भागवतम में तो सेवा भी करना चाहिए। कैसा सेवा करना चाहिए? महत् सेवया। महत् सेवा का महान सेवा क्या है? प्रचार करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में प्रचार करने के लिए अनेकों अनेकों माध्यम है। तो माध्यम ये है, किताबों को वितरण कर सकते हैं, भागवत के ग्रंथों का वितरण कर सकते हैं, और वैसी इस प्रकार की कथाएं अनेकों जगह आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आपको जिस प्रकार की प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति के अनुसार लोगों को कृष्ण के साथ जोड़ना चाहिए। आप ये और एक व्यक्ति को कृष्ण के साथ जोड़ेंगे, कृष्ण देखते हैं अच्छा ये व्यक्ति उसको लाया है, तो उसको आपके आपको कृपा प्राप्त होता है। ये जो कृष्ण कथा का प्रचार में हर व्यक्ति को जुड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है कथा हो रहा है जाके तेरा देख के आता हूँ, चलो बैठ के जाता हूँ, ये भी अच्छा है, लेकिन फिर भी इससे बढ़कर क्या है, मुझे भी कुछ करना है। हमारे पास बहुत सारा शक्ति है और ताकत है, सामर्थ्य है, वो सारा शक्ति और ताकत जो सामर्थ्य है वो सबको कृष्ण के चरण कमलों में अर्पण करना है। तो ये करने के द्वारा तो क्या होता है, भक्त प्रसन्न होते हैं, श्रील प्रभुपाद जी प्रसन्न होते हैं, आचार्य प्रसन्न होते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, हमारी जो कृष्ण प्रेम है हमारे हृदय में जागृत होता है। ये मेरा निवेदन है कि आप अपना जीवन जो है वो किसी और की इधर उधर लोगों की सेवा करने में व्यर्थ मत कीजिएगा। आप कितना भी किसी का भी सेवा करो सामाजिक स्तर में, मेरा मामा मेरा चाचा उसका इसका करते करते आप थक जाएंगे। जिसको आपने सेवा किया वही एक व्यक्ति जो आपको बुरा करेगा, ये निश्चित रूप में ले लीजिएगा। आपने सोचा होगा अरे ये तो मेरा रिश्तेदार है, इसकी सेवा करता हूँ, इसकी सेवा करता हूँ, इसकी सेवा करते करते आप थक जाएंगे, लेकिन आप जो आशा की है मैंने इनको सेवा किया, उनको कुछ किया है, भला किया है, वापस मुझे भला करेगा करके उल्टा आपको यही करेगा कि इतना सारा है लेकिन मुझे कुछ नहीं किया, ऐसे बोलेंगे। इसलिए ये जो सामाजिक और पारिवारिक स्तर में जो आप सोच रहे हो कि मैं इन लोगों की सेवा करके उन लोगों को उद्धार करके मैं सुखी हो जाऊंगा, आप कभी आशा मत कीजिएगा। आपकी जितनी भी शक्ति और सामर्थ्य हैं वो सब कुछ कृष्ण कथा के प्रचार में लगाइए। मैं आशा करता हूँ ऐसी जो कथाएं हैं होना चाहिए, हर महीने में होना चाहिए। आप मान लीजिए आप कोई गुजरात में कोई से या कोई महाराष्ट्र में से कोई शहर से है, उधर इस्कॉन को कोई जानता ही नहीं है, तो आपको ऑर्गेनाइज करना चाहिए उधर जाके। तो ऐसे करने के द्वारा क्या होता है, कृष्ण कथा का प्रचार में आप जिम्मेदारी लेंगे, सहयोग देंगे, उसके द्वारा आपको इतना कृपा प्राप्त होता है। केवल कृपा आपको ही नहीं, आपके माध्यम के द्वारा इतने सारे लोगों को कृष्ण प्राप्त होते हैं आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग एक एक व्यक्ति इधर खड़े बैठे हैं तो सब लोगों को विचार करना चाहिए कि मैं क्या करने वाला हूँ, आपको भागवत श्रवण करने के बाद बहुत सारे इधर सुनने को मिल रहा है, मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, तो बड़ा अच्छी चीज प्राप्त हो रहा है, लेकिन मैं क्या प्रदान कर रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग, तो ये भी सोचना चाहिए, ये भी विचार रखना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे कथाएं का आयोजन होता है, मैं देखता हूं लोग आते हैं और सुनके हैं, फिर वापस चले जाते हैं, फिर अगले साल को फिर इंतजार करते हैं। तो ये जो विचार है इससे थोड़ा सा ऊपर हटना चाहिए, ऊपर जाके क्या सोचना चाहिए, मैं भी कुछ करूंगा, आई विल ऑल्सो डू समथिंग, कुछ ना कुछ करना है। अगर हमारे जीवन में प्रचार का मकसद को रखेंगे, आप देखिए हम इतना जल्दी भक्ति में प्रगति करेंगे हम सोच भी नहीं सकते। प्रभुपाद जी चाहते थे जो भी संत राष्ट्र कृष्ण भावनामृत संस्था के साथ संबंध में आए सब लोग प्रचार होना चाहिए अपने अपने स्तर के, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। कभी कभी ये इस बात को मैं कहता हूँ, और अन्य कहीं कोई धार्मिक संस्थाएं होती हैं तो उधर प्रवचन कौन देता है, एक महंत होगा, उसके अलावा और कोई बोलता ही नहीं है, उनका कोई और किसी को बैठने का अधिकार भी नहीं रहता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में क्या है, अच्छा 10 दिन आए हो इस्कॉन में, कितना सीखा है उतना बोलो, उनको भी बिठाया जाता जाके तुम्हें बोलो। ये आंदोलन है, एक ऐसी बस एक संस्था नहीं है और एक मंदिर नहीं है, मूवमेंट है, हरे कृष्ण मूवमेंट कहा जाता है। मूवमेंट का अर्थ ये है जब लोग इसको प्रचार की कार्य को सीरियसली लेंगे, ये प्रचार कार्य ही ये समझ लीजिए वास्तविक और एकमात्र सेवा है श्री प्रभुपाद जी जो महत है, जिसके द्वारा हमको ये प्राप्त होती है, कृष्ण प्रेम प्राप्त होती है। इसलिए मैं आशा करूंगा कि आप सब लोग ही प्रचार में रुचि रखेंगे, ऐसी ऐसी कथाएं हजारों हजारों हो सकती हैं, अनेकों अनेकों जगह हो सकती है, अनेकों अनेक लोगों को उद्धार हो सकता है। खास करके धन्यवाद देता हूँ लाल गोविंद प्रभु को जो इन्होंने केवल एक हफ्ते के अंदर इतने सारे भक्तों को निमंत्रण दिया, इतने सारे भक्तों को एकत्रित किया, तो निश्चित रूप में कृष्ण का कृपा उनके ऊपर है, नहीं तो एक हफ्ते के अंदर बम्बई में इतने लोगों को इकट्ठा करना साधारण काम नहीं है। तो मैं भी उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार की कथाएँ ऐसी ऐसी आयोजन करते रहें, जितना हो सके उतना ज़्यादा आयोजन करते रहें और लोगों को उद्धार करें। हरे कृष्ण।